लाओ दी किया। नंबर एक, दर्शन की घाटी के विषय में यशायाह की विनाश की भविष्यवाणी।
दर्शन की तराई का भार। अब तुझे क्या हुआ है कि तू पूरी की पूरी छतों पर चढ़ गई है? तू जो हलचल से भरी है, कोलाहलमय नगर, हर्षित नगर, तेरे मारे हुए न तो तलवार से मारे गए हैं, न युद्ध में मरे हैं। तेरे सब शासक एक साथ भाग गए, वे धनुर्धारियों के द्वारा बांध लिए गए हैं। जो जो तुझ में पाए गए, जो दूर से भागे थे, वे सब मिलकर बांध दिए गए हैं। इसलिए मैंने कहा, मुझसे दृष्टि फेर लो, मैं कड़वे मन से विलाप करूंगा। मुझे सांत्वना देने का प्रयत्न न करो, क्योंकि मेरी प्रजा की बेटी लूटी गई है। क्योंकि ये विपत्ति रौंडे जाने और उलझन का दिन है, सेनाओं के प्रभु परमेश्वर की ओर से दर्शन की तराई में परकोटों का ढहाया जाना और पहाड़ों की ओर चिल्लाहट का उठना। यशाया 22:1-8।
यशाया की पुस्तक में बोझ शब्द 18 बार मिलता है। उनमें से 11 उल्लेख सीधे विनाश की भविष्यवाणियों को दर्शाते हैं और बाकी 7 उल्लेख बोझ को ऐसी वस्तु के रूप में संदर्भित करते हैं जो कंधे पर ढोई जाती है। बोझ के रूप में अनुदित उल्लेखों में से केवल एक ऐसा है जो कंधे पर उठाई जाने वाली वस्तु का भी अर्थ देता है और साथ ही विनाश की भविष्यवाणी भी है। मैं उसी एक उल्लेख को संबोधित करना चाहता हूँ जिसमें हिब्रानी शब्द किसी उठाई जाने वाली वस्तु को दर्शाता है और जो साथ ही विनाश की भविष्यवाणी भी है। इसलिए मैं शुरुआत से ही ये भेद स्पष्ट कर रहा हूँ, हालांकि हम इन तथ्यों पर बाद में लौटेंगे। ये अध्याय दर्शन की तराई की परिभाषा के बारे में अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसे दाऊद का नगर और यरूशलेम के रूप में पहचाना गया है। दर्शन की तराई दानियल अध्याय 11 के अंतिम 6 पदों के इतिहास के दौरान लाओदीकियाई एडवेंटिज्म का संदर्भ है। यशाया ने इस विनाश का प्रसंग अध्याय 20 में प्रस्तुत इतिहास के माध्यम से स्थापित किया, जिसमें उन्होंने असीरियाई राजा द्वारा संसार पर क्रमिक विजय का वर्णन किया, जिसने टार्टन नामक एक सैन्य सेनापति को मिस्र में अश्दोद नामक एक नगर पर कब्जा करने के लिए भेजा था।
रविवार का कानून दानियल 11:41 में पहचाना गया है और वहाँ 3 समूहों की पहचान की गई है जो रविवार के कानून के समय पापाई सत्ता के हाथ से बच निकलते हैं।
जिस वर्ष तर्तान अशदोद में आया, जब अश्शूर के राजा सरगोन ने उसे भेजा था और उसने अशदोद के विरुद्ध लड़ाई की और उस पर अधिकार कर लिया, उसी समय आमोज के पुत्र यशाया के द्वारा प्रभु ने कहा, जा अपनी कमर से टाट उतार दे और अपने पांव से जूता उतार दे। और उसने ऐसा ही किया, नग्न और नंगे पांव चलता रहा। और प्रभु ने कहा, जैसे मेरे दास यशाया मिस्र और इथियोपिया के लिए चिन्ह और आश्चर्य बनकर 3 वर्ष तक नग्न और नंगे पांव चला है, वैसे ही अश्शूर का राजा मिस्रियों को कैदी बनाकर और इथियोपियों को बंदी बनाकर छोटे बड़े सबको नग्न और नंगे पांव, यहां तक कि उनके नितंब उघाड़े हुए, मिस्र की लज्जा के लिए ले जाएगा। तब वे इथियोपिया, जिस पर उनकी आशा थी, और मिस्र, जो उनका गौरव था, के कारण भयभीत और लज्जित होंगे। और इस द्वीप का निवासी उस दिन कहेगा, देखो यही हमारी आशा है, जिसके पास हम अश्शूर के राजा से छुड़ाए जाने के लिए सहायता पाने को भागते हैं, तो हम कैसे बचेंगे? यशाया 20:1-6।
द्वीप के निवासियों द्वारा उठाया गया प्रश्न ये है कि वे असीरिया के राजा से कैसे बचें, जिसे दानियेल अध्याय 11 में उत्तर के राजा के रूप में भी दर्शाया गया है।
वो मोहम्मयानो देश में भी प्रवेश करेगा और अनेक देश उलट दिए जाएंगे, परंतु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात एदोम, मोआब और अम्मोन के पुत्रों का प्रधान। दानियेल 11:41।
इस पद में संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून की पहचान की गई है और दानियेल के इस खंड में कुछ सूक्ष्म पहलू हैं जो विचार करने योग्य हैं। दानियेल 11:40-43 में लगातार 3 पद हैं जो सभी देशों की पहचान करते हैं। पद 40 में पूर्व सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों को 1999 में पापसी और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बहा दिया गया। आधुनिक इतिहासकार इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।
तब आयत 42 में हम कंट्रीज शब्द पाते हैं जो पृथ्वी के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उत्तरी राजा पापाई सत्ता मिस्र पर अधिकार कर लेता है जो पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करता है। ये उन सूक्ष्मताओं में से एक है
जिन तीन आयतों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उनमें दूसरी सूक्ष्मता एस्केप शब्द से संबंधित है। पहले आयत 41 में और फिर आयत 42 में, वे दो भिन्न इब्रानी शब्द हैं, यद्यपि दोनों का अनुवाद एस्केप के रूप में किया गया है। आयत 42 में एस्केप के रूप में अनुदित इब्रानी शब्द का अर्थ है कोई छुड़ाव, छुटकारा न मिलना, क्योंकि जब 10 राजा, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी एक विश्व सरकार को पापाई पशु के नियंत्रण में सौंप देने पर सहमत हो जाते हैं, तो कोई बचाव, कोई छुटकारा नहीं होता।
और जो 10 सींग तूने देखे हैं, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अभी तक कोई राज्य नहीं पाया, परंतु वे एक घड़ी के लिए पशु के साथ राजा होने का अधिकार पाएंगे। इनका एक ही मन होगा, और वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य उस पशु को दे देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन्हें पराजित करेगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं, वे बुलाए हुए, चुन लिए हुए और विश्वास योग्य हैं। और उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे, जहां वो वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़े, जातियां और भाषाएं हैं। और जो 10 सींग तूने उस पशु पर देखे, वे उस वेश्या से बैर करेंगे और उसे उजाड़ और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनके हृदय में ये डाल दिया है कि वे एक मत हों और सहमत होकर अपना राज्य उस पशु को दे दें, जब तक कि परमेश्वर के वचन पूरे ना हों। प्रकाशित वाक्य 17:12-17।
इन 10 राजाओं का उल्लेख परमेश्वर के वचन में और एलिया की कथा में बार बार होता है। इसराइल का राजा अहाब 10 कबीलों का प्रमुख था, और उसका विवाह ईजेबेल से हुआ था। ईजेबेल दुनिया के अंत में पापाई सत्ता है, एलिया तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के दूत हैं, और अहाब 10 राजाओं के एक गठबंधन का मुखिया है। रविवार के कानून के भविष्य सूचक इतिहास के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नेता के रूप में अहाब संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। जब असीरिया मिस्र पर कब्जा कर लेता है, तब दानियल 11:42 में उत्तर का राजा अभी अभी 10 राजाओं को अपना राज्य पापाई सत्ता को सौंप देने पर सहमत होने के लिए मजबूर कर चुका होता है।
जैसे जैसे हम अंतिम संकट के निकट आते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रभु के साधनों के बीच सामंजस्य और एकता बनी रहे। संसार तूफान, युद्ध और मतभेद से भरा हुआ है, फिर भी एक ही प्रधान पापाई सत्ता के अधीन लोग उसके साक्षियों में प्रकट परमेश्वर का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ये एकता महान धर्मत्यागी द्वारा सुदृढ़ की जाती है, जब वो सत्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को एकजुट करने का प्रयास करेगा, तब वो उसके समर्थकों को विभाजित और तितर-बितर करने का भी काम करेगा। कलह और फूट उत्पन्न करने के लिए वो ईर्ष्या, बुरे संदेह और निंदात्मक बातों को उकसाता है। साक्ष्य खंड 7:182।
पद 41 में हमें एस्केप शब्द मिलता है और पद 42 में भी एस्केप शब्द मिलता है, परंतु वे दो अलग अलग हिब्रू शब्द हैं। पद 41 में एस्केप के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ है फिसलन के सहारे बच निकलना, मानो फिसल कर निकल जाना। यही शब्द यशायाहा अध्याय 20 के पद 6 में एस्केप के रूप में अनुदित है। उस दिन इस द्वीप का निवासी ये पूछता है कि वो उस अश्शूरी से कैसे बच सकता है, जो उस दिन क्रमशः संसार को जीत रहा है, जैसा कि दानियेल अध्याय 11 और शास्त्र के कई अन्य अंशों में दर्शाया गया है।
दानियेल के 11वें अध्याय के 41वें पद में, जब पापाई सत्ता, या जैसा कि दानियेल उसे प्रस्तुत करता है, उत्तर का राजा, या जैसा कि यशाया उसे प्रस्तुत करता है, असीरी आई, महिमामय देश, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, पर विजय प्राप्त कर रही है, तब दो समूहों की पहचान की जाती है।
वो शोभायुक्त देश में भी प्रवेश करेगा और बहुत से देश उलट दिए जाएंगे, परंतु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात एदोम, मोआब और अम्मोन के पुत्रों के प्रधान। दानियेल 11:41।
एक समूह वे अनेक हैं जो पराजित कर दिए जाते हैं, और दूसरा समूह एदोम, मोआब और अम्मोन की संतानों के प्रधान के रूप में दर्शाया गया है। रविवार के कानून के समय प्रकाशित वाक्य 18:4 उन लोगों को जो अभी भी बाबुल में हैं, बाहर निकल आओ कहकर पुकारता है।
और मैंने स्वर्ग से दूसरी आवाज ये कहते सुनी, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों के भागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से कुछ न पाओ। प्रकाशित वाक्य 18:4।
एदोम, मोआब और अम्मोन के पुत्रों का प्रधान वे हैं जो फिसलन के सहारे बच निकलते हैं, जैसे यशाया अध्याय 20 में द्वीप के लोग ऐसा करने की आशा कर रहे हैं।
पद 41 के संबंध में जिस दूसरी बारीकी का मैं उल्लेख कर रहा हूँ वो ये है कि पद 40, 41 और 42 में हमें कंट्रीज शब्द मिलता है, परंतु पद 41 में वो एक जोड़ा हुआ शब्द है, दानियेल के मूल शब्दों में नहीं है और वहां नहीं होना चाहिए। सोवियत संघ के पतन पर पद 40 की पूर्ति में बहुत से देशों की सत्ता उलट गई, और जब पोपाई सत्ता संयुक्त राष्ट्र पर नियंत्रण कर लेती है तो बहुत से देशों को कब्जे में कर लिया जाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय जो बहुत से गिराए जाते हैं वे बहुत से देश नहीं हैं, वे केवल सेवंथ डे एडवेंटिस्ट ही हो सकते हैं।
यदि आपके सामने सत्य का प्रकाश प्रस्तुत किया गया है जिसने चौथी आज्ञा के विश्राम दिन को प्रकट किया है और ये दिखाया है कि रविवार के पालन के लिए परमेश्वर के वचन में कोई आधार नहीं है, और फिर भी आप झूठे विश्राम दिन से चिपके रहते हैं, उस विश्राम दिन को पवित्र मानने से इनकार करते हैं जिसे परमेश्वर मेरा पवित्र दिन कहता है, तो आप पशु का चिन्ह ले लेते हैं। ये कब होता है? जब आप उस आदेश का पालन करते हैं जो आपको रविवार को काम छोड़ देने और परमेश्वर की आराधना करने की आज्ञा देता है, जबकि आप जानते हैं कि बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो ये दिखाता हो कि रविवार सामान्य कार्य दिवस के अतिरिक्त कुछ और है, तब आप पशु का चिन्ह लेने के लिए सहमत होते हैं और परमेश्वर की मुहर को अस्वीकार करते हैं। रिव्यू एंड हेराल्ड, 13 जुलाई 1897।
सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का प्रत्येक सदस्य बपतिस्मा लेकर कलीसिया का सदस्य बनते समय सप्त का सिद्धांत स्वीकार करता है, और सप्त के संबंध में सत्य के प्रकाश के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है।
सप्त का परिवर्तन रोमी कलीसिया के अधिकार का चिन्ह या निशान है। जो लोग चौथी आज्ञा के दावों को समझते हुए सच्चे सप्त के स्थान पर झूठे सप्त का पालन करना चुनते हैं, वे इस प्रकार उसी शक्ति को आदर अर्पित करते हैं जिसके अधिकार से ही ये आज्ञा दी गई है। पशु का चिन्ह पापसी सप्त है जिसे संसार ने परमेश्वर के नियत दिन के स्थान पर स्वीकार कर लिया है।
अभी तक किसी ने भी पशु का चिन्ह नहीं पाया है। परख का समय अभी नहीं आया है। हर कलीसिया में सच्चे ईसाई है, रोमन कैथोलिक समुदाय भी इसका अपवाद नहीं है, जब तक उन्हें प्रकाश न मिला हो और उन्होंने चौथी आज्ञा के दायित्व को न समझ लिया हो, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता। परंतु जब नकली सप्त को लागू करने का फरमान जारी होगा और तीसरे स्वर्गदूत की प्रबल पुकार मनुष्यों को पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना के विरुद्ध चेतावनी देगी, तब झूठ और सत्य के बीच की रेखा स्पष्ट रूप से खींच दी जाएगी। तब जो लोग अभी भी अवज्ञा में बने रहेंगे वे पशु का चिन्ह प्राप्त करेंगे।
तेजी से हम इस काल के निकट पहुंच रहे हैं जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं एक मिथ्या धर्म का समर्थन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सत्ता के साथ हाथ मिला लेंगी, जिसका विरोध करने के कारण उनके पूर्वजों ने सबसे भीषण उत्पीड़न सहा था। तब कलीसिया और राज्य के संयुक्त अधिकार द्वारा पोप का सप्त लागू कराया जाएगा। एक राष्ट्रीय धर्म त्याग होगा जो केवल राष्ट्रीय विनाश में समाप्त होगा। पांडुलिपि 1:5, 1899।
रविवार के कानून के समय तीसरे स्वर्गदूत के प्रकाश के लिए जवाबदेह ठहराए जाने वाले केवल सातवें दिन के एडवेंटिस्ट हैं, क्योंकि तभी एडवेंटिज्म के बाहर वालों के सामने तीसरे स्वर्गदूत की परीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। रविवार के कानून पर जो अनेक परास्त होंगे वे लाओदीकीय एडवेंटिस्ट हैं, क्योंकि न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होता है।
इसलिए जो अंतिम हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे अंतिम, क्योंकि बहुत से बुलाए जाते हैं परंतु थोड़े चुने जाते हैं। मत्ती 20:16।
दुनिया पर पापाई सत्ता की क्रमिक विजय के संबंध में मिस्र और इथियोपिया के लिए यशाया एक चिन्ह और आश्चर्य है। मिस्र संयुक्त राष्ट्र है, इथियोपिया संयुक्त राज्य अमेरिका है और अश्शूर पापाई सत्ता है। उस भविष्य सूचक इतिहास की पृष्ठभूमि में यशाया विनाश की भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करना शुरू करता है। अध्याय 22 उन लाओदीकियों के बारे में है जो रविवार के कानून के समय उलट दिए जाते हैं, और उन फिलाडेल्फियों के बारे में है जो एदोम, मोआब और अम्मोन के पुत्रों के प्रधान को बाबुल से बाहर बुलाते हैं।
लाओदीकियाई एडवेंटिज्म में उधार पाने के लिए आवश्यक चरित्र का अभाव है, और रविवार के कानून के समय वे प्रभु के मुख से उगल दिए जाते हैं। मैं इस तथ्य का उल्लेख केवल अगले बिंदु पर जोर देने के लिए करता हूँ।
यशाया अध्याय 22 लाओदीकिया के खो जाने का एक और कारण प्रस्तुत करता है, क्योंकि विनाश की भविष्यवाणी दर्शन की तराई के विरुद्ध है। दर्शन के रूप में अनुदित दो प्रमुख हिब्रू शब्द हैं, एक भविष्य सूचक घटनाक्रम का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा मसीह का दर्शन दर्शाता है। एक कलीसिया के बाहर का है और दूसरा कलीसिया के भीतर का। अध्याय 22 में जो शब्द है वो भविष्य सूचक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला दर्शन है, और यही वही शब्द है जिसे नीति वचन की पुस्तक में दर्शन के रूप में अनुदित किया गया है।
जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ प्रजा नाश हो जाती है, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वो सुखी है। नीति वचन 29:18।
दर्शन की तराई का भार
वो भविष्यवाणी है जो संसार के अंत में परमेश्वर की कलीसिया में उपासकों के दो वर्गों की पहचान करती है। एक वर्ग जिसका प्रतिनिधि शेबना है, लौदीकिया है, और दूसरा वर्ग जिसका प्रतिनिधि हिल्कियाह का पुत्र एलियाकिम है, फिलाडेल्फिया है। अध्याय में इन दोनों वर्गों के बीच का भेद स्वाभाविक ही 10 कुंवारियों के दृष्टांत वाले भेद के समान है। आधी रात को एक वर्ग के पास तेल होता है और दूसरे के पास नहीं। प्रतीक के रूप में तेल जहां पाया जाता है उसके संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न सत्यों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु यशायाह 22 में 10 कुंवारियों का तेल दर्शन शब्द द्वारा दर्शाया गया है। एक वर्ग के पास तेल है, दूसरे के पास नहीं।
समस्त पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े अभिषिक्त जन उस स्थान के अधिकारी हैं जो कभी शैतान को आवरण करने वाले करूब के रूप में दिया गया था। अपने सिंहासन को घेरे हुए पवित्र प्राणियों के द्वारा प्रभु पृथ्वी के निवासियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हैं। सुनहरा तेल उस अनुग्रह का प्रतीक है जिससे परमेश्वर विश्वासियों के दीपकों को पूरित रखते हैं ताकि वे टिमटिमाए नहीं और बुझ न जाए। यदि परमेश्वर के आत्मा के संदेशों के रूप में ये पवित्र तेल स्वर्ग से न उंडेला जाता तो बुराई की शक्तियां मनुष्यों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेतीं। जब हम वे संदेश ग्रहण नहीं करते जो वो हमें भेजता है तब परमेश्वर का अनादर होता है। इस प्रकार हम उस स्वर्णिम तेल को अस्वीकार करते हैं जिसे वो हमारी आत्माओं में उंडेलना चाहता है ताकि उसे अंधकार में पड़े हुए लोगों तक पहुँचाया जा सके। जब ये बुलाहट आएगी, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर निकलो, तब जिन्होंने पवित्र तेल प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने अपने हृदयों में मसीह के अनुग्रह को नहीं संजोया, वे मूर्ख कुवारी कन्याओं की तरह पाएंगे कि वे अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके भीतर स्वयं उस तेल को प्राप्त करने की शक्ति नहीं होगी और उनके जीवन बर्बाद हो जाएंगे। पर यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की याचना करें, यदि हम मूसा की तरह प्रार्थना करें, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया जाएगा। स्वर्णिम नलिकाओं के द्वारा स्वर्णिम तेल हम तक पहुंचाया जाएगा, न सामर्थ्य से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, सेनाओं के प्रभु कहते हैं। धर्म के सूर्य की उज्ज्वल किरणों को ग्रहण करके परमेश्वर की संतान संसार में दीपकों के समान चमकती है। रिव्यू एंड हेराल्ड 20 जुलाई 1857।
भविष्य वक्ताओं की आत्माएं परस्पर सहमत हैं और जकर्याह के दो अभिषिक्त प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के दो गवाह भी हैं।
दो गवाहों के विषय में भविष्यद्वक्ता आगे ये घोषित करता है, ये दो जैतून के वृक्ष हैं और दो दीवट जो पृथ्वी के परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं। 13 वचन भजनकार ने कहा, मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रकाशित वाक्य 11:7 भजन संहिता 100:105। दो गवाह पुराने और नए नियम के पवित्र शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही परमेश्वर की व्यवस्था की उत्पत्ति और स्थायित्व के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। दोनों उद्धार की योजना के भी साक्षी हैं। पुराने नियम के प्रतीक बलिदान और भविष्यवाणियां आने वाले उद्धारकर्ता की ओर संकेत करती हैं। नए नियम के सुसमाचार और पत्रियां उस उद्धारकर्ता का वर्णन करती हैं जो प्रतीक और भविष्यवाणी में पूर्व कथित रीति से ठीक उसी प्रकार आ चुका है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 267।
जकर्याह के दो अभिषिक्त उस संचार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में चित्रित किया गया है। तेल जो ऐतिहासिक घटनाओं का भविष्य सूचक दर्शन है, पुराने और नए नियम के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में इन दो गवाहों की पहचान संदर्भ के अनुसार मूसा और एलिया के रूप में की गई है। मूसा और एलिया अपने आप में एक प्रतीक है।
जब उन्हें साथ में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे रूपांतरण के पर्वत पर या प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में, तब वे दो भिन्न सत्यों के प्रतीक होते हैं। रूपांतरण के पर्वत पर वे रविवार कानून के संकट के दौरान के शहीदों और 1,44,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में वे पुराने और नए नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु एडवेंटवाद के लिए वे इससे भी अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहूदियों के लिए दो गवाह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता थे जो पुराने नियम का प्रतिनिधित्व करते थे, और मसीहियों के लिए दो गवाह पुराना और नया नियम थे। परंतु एडवेंटवाद के लिए दो गवाह परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही हैं। इसी कारण यूहन्ना पतमोस में था,
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई भी हूँ और क्लेश में तथा यीशु मसीह के राज्य और धीरज में तुम्हारा साथी, उस द्वीप पर था जिसे पतमोस कहा जाता है, परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह की गवाही के कारण। प्रकाशित वाक्य 1:9।
यशाया अध्याय 22 में मूसा और एलिया के दो गवाह दर्शाए गए हैं। हालांकि इसे तभी पहचाना जा सकता है जब आप इस अध्याय पर अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत को लागू करें। विचार करें कि एम्माउस के मार्ग पर यीशु ने अपने शिष्यों को भविष्य सूचक घटनाओं के दर्शन की अपनी व्याख्या कहां से शुरू की थी।
मूसा से, अर्थात बाइबल इतिहास के एकदम आरंभ से प्रारंभ करके मसीह ने समस्त शास्त्रों में अपने विषय की बातों की व्याख्या की। युगों की अभिलाषा 696।
एलिया वो नबी है जो प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले प्रकट होता है, एक ऐसा संदेश लेकर जो अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत पर आधारित है, पितरों अल्फा के हृदयों को बच्चों ओमेगा की ओर फेरते हुए। मूसा और एलिया बाइबलीय भविष्यवाणी के अल्फा और ओमेगा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो मूसा विलियम मिलर थे। मूसा और मिलर दोनों की मृत्यु हुई और दोनों को प्रेरणा द्वारा उद्धार पाए हुए के रूप में पहचाना गया। मूसा तो बेशक अपनी मृत्यु के तुरंत बाद पुनरुत्थित कर दिए गए, परंतु मिलर के पुनरुत्थान तक स्वर्गदूत उसकी कब्र के आसपास प्रतीक्षा कर रहे हैं। एलिया प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले के अंतिम संदेशवाहक का प्रतिनिधित्व करता है।
यहूदियों ने उस संदेश के प्रचार को रोकने का प्रयास किया जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में की गई थी, परंतु भविष्यवाणी अवश्य पूरी होनी है। प्रभु कहते हैं, देखो मैं प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता एलियाह को भेजूंगा। मलाकी 4:3-5। कोई एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में आने वाला है, और जब वो प्रकट होगा तो लोग कह सकते हैं, तुम बहुत अधिक उत्साही हो, तुम शास्त्रों की व्याख्या उचित रीति से नहीं करते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपना संदेश कैसे सिखाना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के कार्य और मनुष्य के कार्य में भेद नहीं कर सकते। मैं वही सत्य कहूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देता है, और मैं अब कहता हूँ, यदि आप दोष निकालते रहेंगे, विरोध और मतभेद की भावना बनाए रखेंगे, तो आप कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे पास अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। यूहन्ना 16:12। वे पवित्र और शाश्वत बातों की कद्र करने की अवस्था में नहीं थे, परंतु यीशु ने ये प्रतिज्ञा की कि वो सांत्वनाकर्ता भेजेगा जो उन्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ उसने उनसे कहा था वो सब उन्हें स्मरण कराएगा। भाइयों, हमें मनुष्य पर अपना भरोसा नहीं रखना चाहिए। मनुष्य पर भरोसा न करो जिसकी नासिका में श्वास है, क्योंकि उसका क्या मूल्य है। यशाया 2:22। अपनी असहाय आत्माओं को आप यीशु पर पूरी तरह टिका दीजिए। जब पर्वत पर झरना है तो घाटी के झरने से पीना हमें शोभा नहीं देता। आइए हम नीचे की धाराओं को छोड़ दें, हम ऊंचे स्रोतों के पास आएं। यदि सत्य का कोई बिंदु ऐसा है जिसे आप नहीं समझते, जिस पर आप सहमत नहीं हैं, तो जांच पड़ताल कीजिए। शास्त्र की तुलना शास्त्र से कीजिए। परमेश्वर के वचन की खदान में गहराई तक उतरकर सत्य की खोज कीजिए। आपको अपने आप को और अपनी रायों को परमेश्वर की वेदी पर रखना होगा। अपनी पूर्वधारणाएं दूर कर दीजिए और स्वर्गीय आत्मा को आपको समस्त सत्य में मार्गदर्शन करने दीजिए। चयनित संदेश, पुस्तक 1:5-12।
यशायाह 22 में शेबना और एलियाकीम। संसार के अंत में जब उत्तर का राजा यरूशलेम पर चढ़ाई कर रहा होता है, एडवेंटवाद के भीतर बुद्धिमानों और मूर्खों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलियाकीम, हिल्कियाह का पुत्र, के पास दर्शन था।
शेबना के पास नहीं था।
जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ प्रजा नाश हो जाती है, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वो सुखी है। नीति वचन 29:18।
भविष्यवाणी का संदेश अर्थात इस पद का दर्शन दो बातों को संबोधित करता है। यदि आप भविष्यवाणी के प्रकाश की वृद्धि को समझते हैं तो आप जीवित रहते हैं, और यदि नहीं तो मर जाते हैं। यदि आप नहीं समझते तो रविवार के कानून की परीक्षा में विश्राम दिन का पालन करने के लिए आप तैयार नहीं हो पाएंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। जब रविवार के कानून के समय लाओदीकिया के एडवेंटिस्ट ठोकर खा जाते हैं तो वे व्यवस्था को इसलिए अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन को अस्वीकार कर दिया। उनके पास तेल नहीं होता, वे उस ज्ञान वृद्धि को नहीं समझते जो अनुग्रह काल के समाप्त होने से ठीक पहले मुहर खुलने पर प्रकट होती है।
क्योंकि तू कहता है मैं धनी हूँ और संपत्ति में बढ़ गया हूँ और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, दयनीय, कंगाल, अंधा और नंगा है। प्रकाशित वाक्य 3:17।
यशाया का चिन्ह ये है कि वो 3 वर्ष तक नग्न और नंगे पांव चला।
उसने ये उन लोगों को चेताने के लिए किया जो उसके भविष्यवाणी के संदेश से चेतावनी लेंगे कि यदि तुम भविष्यवाणी वाली घटनाओं के दर्शन को नहीं समझते तो तुम्हारा सामना रविवार के कानून से होगा और तुम एक बंदी बन जाओगे जिसे दीन, दयनीय, निर्धन, अंधा और नग्न अवस्था में ले जाया जाएगा। यशाया अपने इतिहास के लिए एक चिन्ह और अद्भुत था, पर संसार के अंत के लिए तो वो उससे भी अधिक एक चिन्ह और अद्भुत था।
अब ये सब बातें उन पर उदाहरण के लिए घटित हुईं और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं जिन पर संसार के अंत आ पहुँचे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:11।
अध्याय 22 के पहले 5 पदों में यरूशलेम, दाऊद का नगर को कोलाहलपूर्ण, आनंदित नगर के रूप में बताया गया है जो हलचलों से भरा है। एक प्रसिद्ध बाइबलीय कथन जिसे सांसारिक लोग भी उद्धृत करते हैं इस अध्याय में इस आनंदित, कोलाहलपूर्ण और हलचलों से भरे नगर को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जब 13वें पद में वे हर्ष के साथ कहते हैं, हम खाएं और पिएं क्योंकि कल हम मरेंगे, तथापि यद्यपि वे आनंदित हैं, उनके पुरुष मार डाले गए हैं पर न तो तलवार से न ही युद्ध में, इसलिए यशाया ये प्रश्न उठाता है, तुझे क्या हुआ है?
जो भी उन्हें पीड़ित कर रहा है उसने उन्हें घरों की छतों पर चढ़ जाने पर मजबूर कर दिया है। छतों पर जाना सूर्य, चंद्रमा और तारों की पूजा का प्रतीक है। ये अध्यात्मवाद का प्रतीक है। इस अंश में एडवेंटिज्म आध्यात्मिक भ्रम में है।
और जो लोग मकानों की छतों पर आकाश की सेना की आराधना करते हैं और जो आराधना करते और प्रभु की शपथ खाते हैं और मलकाम की शपथ भी खाते हैं और जो प्रभु से फिर गए हैं और जिन्होंने प्रभु को न तो खोजा है न उससे पूछा है।
प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में मौन रहो
क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। क्योंकि प्रभु ने बलि तैयार की है, उसने अपने अतिथियों को बुलाया है। और प्रभु की बलि के दिन ये होगा कि मैं प्रधानों को और राजा के पुत्रों को और उन सबको दंड दूंगा जो विचित्र वस्त्र पहने हुए हैं। उसी दिन मैं उन सबको भी दंड दूंगा जो देहरी पर कूदते हैं, जो अपने स्वामियों के घरों को हिंसा और छल से भरते हैं। सपन्याह 1:9।
रविवार के कानून के संकट के समय यरूशलेम के रूप में प्रस्तुत एडवेंटवाद दर्शन की तराई में है। तेल या दर्शन द्वारा दर्शाए गए भविष्यद्वाणी संदेश को जो अस्वीकार करते हैं वे आत्मवाद का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका उल्लेख पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की 2री पत्री में किया है। वहाँ हमें वे भी मिलते हैं, शेबना, जिन्होंने सत्य का प्रेम स्वीकार नहीं किया,
और इसी कारण परमेश्वर उन्हें एक प्रबल भ्रम भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, ताकि वे सब दंडित ठहरें जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया परंतु अधर्म में प्रसन्नता की। 2 थिस्सलुनीकियों 2:11-12।
स्वाभाविक ही पौलुस द्वारा प्रयुक्त सत्य शब्द एक यूनानी शब्द है जो इब्रानी के सत्य शब्द से लिया गया है,
जो उन 3 इब्रानी अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है जो अल्फा और ओमेगा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत सत्य का अस्वीकार लाओदीकियों पर प्रबल भ्रम लाता है, और वो भ्रम आत्मवाद है।
भविष्यद्वक्ता यशाया कहते हैं, जब वे तुमसे कहे उनसे परामर्श करो जिनमें परिचित आत्माएं हैं और उन जादूगरों से जो फुसफुसाते और बड़बड़ाते हैं, तो क्या एक प्रजा अपने परमेश्वर से नहीं पूछेगी? क्या जीवित लोग मृतकों से परामर्श ले? व्यवस्था और साक्ष्य की ओर यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो इसका कारण ये है कि उनमें प्रकाश नहीं है। यशाया 8:19-20। यदि मनुष्य मनुष्य के स्वभाव और मरे हुओं की अवस्था के विषय में शास्त्रों में इतनी स्पष्ट रीति से बताई गई सच्चाई को ग्रहण करने के इच्छुक होते तो वे आत्मावाद के दावों और प्रकटियों में सामर्थ्य, चिन्हों और झूठे आश्चर्यों के साथ शैतान के काम को देख लेते। परंतु शारीरिक हृदय को इतनी प्रिय स्वतंत्रता छोड़ने और उन पापों का त्याग करने के बजाय जिन्हें वे प्रेम करते हैं, असंख्य लोग प्रकाश के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चेतावनियों की परवाह किए बिना सीधे चलते चले जाते हैं, जबकि शैतान उनके चारों ओर अपने फंदे बुनता है और वे उसके शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम न किया कि वे उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर उन्हें प्रबल भ्रम भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। 2 थिस्सलुनीकियों 2:10-11। महान संघर्ष 562।
यशायाह 22 में आनंदमय नगर के पुरुष मार डाले जाते हैं, परंतु न युद्ध से और न तलवार से। उन्हें एक साथ बांध दिया जाता है और जो नेता भाग गए हैं उनके साथ ही मार डाला जाता है।
यदि कलीसिया संसार के समान मार्ग अपनाती है तो उसका भी वही भाग्य होगा। नहीं, बल्कि क्योंकि उसे अधिक प्रकाश मिला है, उसका दंड पश्चाताप ही नो के दंड से भी अधिक होगा।
हम एक समुदाय के रूप में ये दावा करते हैं कि हमारे पास पृथ्वी के अन्य सभी लोगों से बढ़कर सत्य है, तब हमारा जीवन और चरित्र ऐसे विश्वास के अनुरूप होना चाहिए। वो दिन अब निकट ही है जब धर्मी स्वर्गीय कोठार के लिए बहुमूल्य अन्न की तरह गट्ठरों में बांधे जाएंगे, जबकि दुष्ट जंगली घास के समान उस अंतिम महान दिन की आग के लिए इकट्ठे किए जाएंगे। परंतु गेहूं और जंगली घास कटनी तक साथ साथ उगते हैं। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5:100।
यशाया 22 में नेतृत्व को धनुर्धर ने एक साथ बांध दिया है। शेबना को घर का प्रमुख बताया गया है और उसका पद हिल्किया के पुत्र एलियाकिम को दिया जाएगा। यशाया 22 में भविष्य सूचक घटनाओं के दर्शन द्वारा प्रस्तुत भविष्यवाणी संदेश ने, जब उत्तर का राजा निकट आ रहा है, यरूशलेम में उपासकों की दो श्रेणियां उत्पन्न कर दी है। एक श्रेणी स्वर्गीय कोठार के लिए बांधी जा रही है और दूसरी अंतिम दिनों की आग के लिए। दुष्टों को जिसने बांधा है वो धनुर्धर है, जो परमेश्वर के वचन में इस्लाम के अनेक प्रतीकों में से एक है।
और केदार के पुत्रों के पराक्रमी धनुर्धारियों की शेष संख्या क्षीण हो जाएगी, क्योंकि इसराइल के प्रभु परमेश्वर ने ये कहा है। यशाया 21:17।
और इश्माएल के पुत्रों के नाम ये है, उनके नामों के अनुसार उनकी पीढ़ियों के अनुसार। इश्माएल का पहलौठा नेबायोत और केदार और अदबीएल और मिबसाम और मिशमा और दूमा और मसा, हदार और तेमा, यतूर, नफीश और केदेमा। ये इश्माएल के पुत्र हैं और ये उनके नाम हैं उनके नगरों के अनुसार और उनके किलों के अनुसार, अपनी अपनी जातियों के अनुसार 12 सरदार। उत्पत्ति 25:13-16।
एडवेंटिस्ट आंदोलन का नेतृत्व उस समय धनुर्धारियों द्वारा बांध दिया गया जब उन्होंने इस संदेश को अस्वीकार कर दिया कि 11 सितंबर 2001 को बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति में इस्लाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया था। 9/11 का हमला उस संदेश की पुष्टि था जिसकी मुहर 1979 में सोवियत संघ के पतन के समय खोली गई थी। 9/11 पर इस्लाम का हमला 11 अगस्त 1840 के समानांतर था, जब इस्लाम को रोके जाने के बारे में एक भविष्यवाणी ने मिलर के मुख्य भविष्य सूचक नियम कि एक दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है की पुष्टि करके प्रथम स्वर्गदूतों के संदेश को सशक्त किया। 11 अगस्त 1840 दिन बराबर वर्ष सिद्धांत पर आधारित एक पूर्व कथित घटना की पूर्ति थी। जब ये पूरी हुई तो प्रथम स्वर्गदूतों का संदेश संसार के हर मिशन स्टेशन तक पहुंचाया गया। 9 डबलिन ने उस दर्शन के मूल नियम की पुष्टि की जिसे प्रचार करने के लिए एडवेंटवाद को दिया गया था। वो नियम ये है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब 11 अगस्त 1840 को दिन वर्ष सिद्धांत की पुष्टि हुई तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का बलवान स्वर्गदूत उतरा, जिससे मिलर के न्याय की घड़ी के संदेश का सशक्तिकरण चिह्नित हुआ, और यही प्रतिरूप तब प्रकट हुआ जब 9 डबलिन को प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का स्वर्गदूत उतरा।
ये बात कहाँ से उठी कि मैंने ये घोषित किया है कि न्यूयॉर्क ज्वारीय लहर से बहा दिया जाएगा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि जब मैंने वहाँ विशाल इमारतों को मंजिल पर मंजिल खड़ी होते देखा, जब प्रभु पृथ्वी को भयंकर रूप से हिलाने के लिए उठ खड़े होंगे, तब कितने भयानक दृश्य घटेंगे।
तब प्रकाशित वाक्य 18:1-3 के वचन पूरे होंगे। प्रकाशित वाक्य का पूरा 18वां अध्याय पृथ्वी पर आने वाली बातों के विषय में एक चेतावनी है, पर न्यूयॉर्क के विषय में जो आने वाला है उसके संबंध में मुझे कोई विशेष प्रकाश नहीं दिया गया है। केवल इतना पता है कि एक दिन वहां की विशाल इमारतें परमेश्वर की शक्ति की उलट पलट से गिरा दी जाएंगी। मुझे जो प्रकाश दिया गया है उससे मुझे ये मालूम है कि संसार में विनाश विद्यमान है। प्रभु का एक वचन, उसकी पराक्रमी शक्ति का एक स्पर्श और ये विशाल इमारतें गिर पड़ेंगी। ऐसे दृश्य घटेंगे जिनकी भयंकरता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिव्यू एंड हेरल्ड, 5 जुलाई 1906।
निस्संदेह इस्लाम के बारे में कहने को और भी बहुत कुछ है, परंतु शेबना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य सूचक इतिहास की उस दृष्टि को अस्वीकार करते हैं जो इतिहास की पुनरावृत्ति पर आधारित है और जिसके साथ इतिहास की पुनरावृत्ति का मूल सत्य जुड़ा है कि किसी चीज की शुरुआत उसके अंत को दर्शाती है। 11 अगस्त 1840 को इस्लाम पर लगाए गए अंकुश ने प्रकाशित वाक्य 10 के स्वर्गदूत को नीचे ले आया और 9 ग्राम को इस्लाम की मुक्ति ने प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत को नीचे ले आई।
और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों और इसराइल के घराने के सरदारों, सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या न्याय को जानना तुम्हारा काम नहीं है? जो भलाई से बैर रखते हैं और बुराई से प्रेम करते हैं, जो लोगों की खाल उनके ऊपर से नोच लेते हैं और उनका मांस उनकी हड्डियों पर से उतार लेते हैं, जो मेरे लोगों का मांस भी खाते हैं, उनकी खाल उतार लेते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ते हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके बर्तन में पकाने के लिए, हाँ, कड़ाही के भीतर के मांस के समान काटते हैं, तब वे यहोवा को पुकारेंगे पर वो उनकी न सुनेगा, बल्कि उस समय वो अपना मुख उनसे छिपा लेगा, क्योंकि उनके काम बुरे रहे हैं। मेरे लोगों को भटका देने वाले भविष्यद् वक्ताओं के विषय में यहोवा यूं कहता है, वे जो अपने दांतों से काटते खाते हैं और शांति पुकारते हैं, पर जो उनके मुंह में कुछ न देता उसके विरुद्ध वे युद्ध की तैयारी करते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए रात होगी ताकि तुम्हें दर्शन न मिले, और तुम्हारे ऊपर अंधियारा होगा कि तुम भविष्यवाणी न कर सको, और भविष्यद् वक्ताओं पर सूर्य अस्त होगा और उन पर दिन अंधकारमय हो जाएगा। तब दृष्टा लज्जित होंगे और भावी बताने वाले लज्जा से भरकर उलझेंगे। हाँ, वे सब अपने होंठ ढांपेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर न होगा। परंतु सच तो ये है कि मैं यहोवा के आत्मा से और न्याय से और पराक्रम से सामर्थ्य से परिपूर्ण हूँ, ताकि याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप बताऊँ। हे याकूब के घराने के प्रधानों और इसराइल के घराने के सरदारों, जो न्याय से घृणा करते हो और सारी सीधाई को बिगाड़ते हो, ये सुनो, वे सियोन को रक्त से और यरूशलेम को अधर्म से बनाते हैं, उसके प्रधान घूस लेकर न्याय करते हैं, उसके याजक मजदूरी लेकर शिक्षा देते हैं और उसके भविष्यद् वक्ता पैसे लेकर भविष्यवाणी करते हैं, तो भी वे यहोवा पर भरोसा रखकर कहते हैं, क्या यहोवा हमारे बीच में नहीं है, हम पर कोई बुराई नहीं आएगी। मीका 3:12।
और एरियल यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाली सब जातियों की भीड़, हाँ, जो उससे और उसके दुर्ग से लड़ती है और उसे क्लेश देती है, रात के स्वप्न के समान होंगी। ये वैसा ही होगा जैसा कि कोई भूखा मनुष्य स्वप्न देखता है और देखो वो खा रहा है, पर वो जागता है और उसके प्राण खाली रहते हैं, या जैसा कि कोई प्यासा मनुष्य स्वप्न देखता है और देखो वो पी रहा है, पर वो जागता है और देखो वो निर्बल है और उसके प्राण में तृष्णा लगी रहती है, वैसा ही सियोन पर्वत के विरुद्ध लड़ने वाली सब जातियों की भीड़ होगी। ठहरो और चकित हो, चिल्लाओ और पुकारो, वे दाखरस से नहीं फिर भी मतवाले हैं, वे मदिरा से नहीं फिर भी लड़खड़ाते हैं, क्योंकि यहोवा ने तुम पर गहरी नींद की आत्मा उंडेल दी है और तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। भविष्यद् वक्ताओं और तुम्हारे प्रधानों दृष्टाओं को उसने ढंक दिया है, और सबका दर्शन तुम्हारे लिए ऐसी पुस्तक के वचनों के समान हो गया है जिस पर मुहर लगी है, जिसे लोग किसी विद्वान के हाथ में देकर कहते हैं, कृपा कर इसे पढ़, पर वो कहता है, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर लगी है, और वो पुस्तक किसी अशिक्षित को देकर कहते हैं, कृपा कर इसे पढ़, पर वो कहता है, मैं तो अशिक्षित हूँ। इस कारण यहोवा ने कहा, क्योंकि ये प्रजा अपने मुंह से मेरे निकट आती है और अपने होठों से मेरा आदर करती है, पर अपना हृदय मुझसे दूर कर लिया है, और मेरे प्रति उनका भय मनुष्यों की आज्ञाओं से सिखाया जाता है, इसलिए देखो
मैं इस प्रजा में एक अद्भुत कार्य करूंगा, हाँ अद्भुत कार्य और आश्चर्य, क्योंकि उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नाश होगी और उनके समझदारों की समझ छिपा दी जाएगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति यहोवा से छिपाने के लिए गहराई से प्रयत्न करते हैं और जिनके काम अंधकार में होते हैं और जो कहते हैं कौन हमें देखता है और कौन हमें जानता है। निश्चय ही तुम्हारी ये उलट पलट कुम्हार की मिट्टी के समान मानी जाएगी। क्या कृति अपने बनाने वाले के विषय में कहेगी उसने मुझे नहीं बनाया, या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले के विषय में कहेगी उसमें समझ न थी। यशाया 29:7-6।
यशाया के अनुसार दर्शन की तराई ये है, क्लेश का दिन, रौंदे जाने का दिन और सेनाओं के प्रभु परमेश्वर की ओर से उलझन का दिन। दर्शन की तराई में दीवारों को ढाने का और पहाड़ों की ओर पुकारने का। इसलिए यशाया कड़वे आंसू बहाता है, जैसे यीशु ने भी बहाए।
यीशु के आंसू उनके अपने दुख की आशंका में नहीं थे, उनके सामने ही गतसमनी थी जहां शीघ्र ही घोर अंधकार की भयावहता उन पर छा जाने वाली थी। भेड़ फाटक भी दृष्टि में था, जिससे होकर सदियों से बलिदान के लिए पशुओं को ले जाया जाता रहा था। ये फाटक शीघ्र ही उनके लिए, उस महान प्रतिरूप के लिए खुलने वाला था, जिसके बलिदान की ओर, जो संसार के पापों के लिए था, ये सब बलिदान संकेत करते आए थे। पास ही कलवरी थी, उनकी आसन्न यातना का स्थल, फिर भी उद्धारकर्ता ने आत्मिक व्यथा में जो रोया और कराहा, वो अपनी क्रूर मृत्यु की इन स्मृतियों के कारण नहीं था, वो स्वार्थ से उत्पन्न शोक नहीं था, अपनी ही यातना का विचार उस महान आत्म बलिदानी आत्मा को भयभीत नहीं कर पाया। यीशु के हृदय को जो बेद गई वो यरूशलेम की झलक थी, वो यरूशलेम जिसने परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार किया और उसके प्रेम का तिरस्कार किया, जिसने उसके शक्तिशाली चमत्कारों से भी विश्वास करने से इनकार किया और जो उसका प्राण लेने पर तुली हुई थी। उसने देखा कि अपने उद्धारकर्ता को अस्वीकार करने के अपराध में वो क्या बन चुकी थी, और ये भी कि यदि वो उसे स्वीकार करती जो अकेला उसके घाव को चंगा कर सकता था, तो वो क्या बन सकती थी। वो उसे बचाने आया था, वो उसे कैसे त्याग देता।
इज़राइल एक कृपा प्राप्त जाति रहा था, परमेश्वर ने उनके मंदिर को अपना निवास बनाया था, वो स्थिति में सुंदर, समस्त पृथ्वी का आनंद था। भजन संहिता 48:2। वहाँ मसीह की संरक्षक देखभाल और कोमल प्रेम का, जैसा एक पिता अपनी इकलौती संतान के लिए रखता है, 1000 से अधिक वर्षों का अभिलेख था। उसी मंदिर में भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी गंभीर चेतावनियां सुनाई थी। वहाँ धधकते धूपदान लहराए जाते थे, जबकि धूप उपासकों की प्रार्थनाओं के साथ मिलकर परमेश्वर के पास उठती थी। वही पशुओं का लहू बहाया गया था जो मसीह के लहू का प्रतीक था। वही यहोवा ने दया आसन के ऊपर अपनी महिमा प्रकट की थी। वहाँ याजकों ने याजकीय सेवा की थी और प्रतीक तथा विधि विधानों की धूमधाम युगों तक चलती रही थी, परंतु ये सबका अंत होना ही था।
यीशु ने अपना वो हाथ उठाया, वो हाथ जिसने कितनी बार रोगियों और दुख उठाने वालों को आशीष दी थी, और उसे उस विनाश के लिए नियत नगर की ओर लहराते हुए दुख से टूटी हुई वाणी में पुकार उठे, यदि तू जानती, हाँ तू ही, कम से कम इसी तेरे दिन में वे बातें जो तेरी शांति से संबंधित हैं। यहाँ उद्धारकर्ता ठहर गए और ये कहे बिना रह गए कि यरूशलेम की क्या दशा होती यदि वो उस सहायता को स्वीकार कर लेती जिसे परमेश्वर उसे देना चाहता था, अपने प्रिय पुत्र का उपहार। यदि यरूशलेम वो जानती जो जानना उसका विशेषाधिकार था और उस प्रकाश पर ध्यान देती जो स्वर्ग ने उसे भेजा था, तो वो समृद्धि के गर्व में राज्यों की रानी बनकर अपनी परमेश्वर प्रदत्त शक्ति के बल पर स्वतंत्र खड़ी होती। उसके फाटकों पर कोई सशस्त्र सैनिक खड़े न होते, न उसकी दीवारों पर रोमी ध्वज लहराते। यदि वो अपने छुड़ाने वाले को स्वीकार कर लेती तो यरूशलेम को जो गौरवमय नियति मिल सकती थी वो परमेश्वर पुत्र के सामने उभर आई। उन्होंने देखा कि उसके द्वारा वो अपनी गंभीर व्याधि से चंगी हो सकती थी, दासत्व से मुक्त हो सकती थी और पृथ्वी की शक्तिशाली महानगर के रूप में स्थापित हो सकती थी। उसकी दीवारों से शांति का कबूतर सब राष्ट्रों की ओर निकल जाता, वो संसार की महिमा का मुकुट होती। परंतु यरूशलेम क्या हो सकती थी, उसका उज्ज्वल चित्र उद्धारकर्ता की दृष्टि से फीका पड़ जाता है। वो समझता है कि अब वो रोमी जुए के अधीन है, परमेश्वर की अप्रसन्नता सह रही है और उसके दंडात्मक न्याय के लिए अभिशप्त है। वो अपने विलाप के टूटे हुए सूत्र को फिर से पकड़ता है, पर अब वे तेरी आंखों से छिप गए हैं, क्योंकि तेरे ऊपर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर खाई खोदेंगे और तुझे चारों तरफ से घेरेंगे और हर ओर से तुझे अवरुद्ध कर देंगे और तुझे भूमि सात कर देंगे और तेरे भीतर के बच्चों सहित, और वे तुझमें पत्थर पर पत्थर न छोड़ेंगे, क्योंकि तू अपने दर्शन के समय को न पहचान सकी।
मसीह यरूशलेम और उसके बच्चों को बचाने आए थे, परंतु फरीसीय अभिमान, कपट, ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने से रोक दिया था। यीशु उस भयानक दंड को जानते थे जो उस विनाश के लिए नियत नगर पर आने वाला था। उन्होंने यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखा, घेराबंदी में फंसे निवासियों को भूखमरी और मृत्यु की ओर धकेला जाता देखा, माएँ अपने ही बच्चों के शवों को खाकर पेट भरती हुईं और माता पिता तथा बच्चे एक दूसरे से भोजन का अंतिम कौर छीनते हुए। भूख की कचोट ने स्वाभाविक स्नेह को नष्ट कर दिया था। उन्होंने देखा कि यहूदियों की हठधर्मिता, जो उनके द्वारा उसके उद्धार को ठुकराने में प्रकट हुई थी, उन्हें आक्रमणकारी सेनाओं के सामने समर्पण से भी इनकार करने की ओर ले जाएगी। उन्होंने कलवरी को देखा, जहां उन्हें ऊंचा उठाया जाना था। वहां क्रूस इतने घने खड़े थे जैसे जंगल में वृक्ष। उन्होंने दुर्दशाग्रस्त निवासियों को यातना यंत्रों पर और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पीड़ा सहते देखा। सुंदर महलों का विनाश, मंदिर का खंडहर हो जाना और उसकी विशाल दीवारों का ये हाल कि एक पत्थर दूसरे पर न बचा, जबकि नगर खेत की तरह जोत दिया गया था। ऐसे भयावह दृश्य को देखकर उद्धारकर्ता का वेदना में रो पड़ना स्वाभाविक ही था। यरूशलेम उसकी देखभाल के साए में पलता रहा था और जैसे एक स्नेही पिता भटके हुए पुत्र पर शोक करता है, वैसे ही यीशु उस प्रिय नगर पर रोए। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे विनाश के हवाले होते कैसे देखूं? क्या मैं तुझे तेरे अधर्म का प्याला भरने के लिए जाने दूं? एक आत्मा का मूल्य इतना है कि उसकी तुलना में संसार भी नगण्य हो जाता है, पर यह तो पूरा एक राष्ट्र नाश होने को था। जब तेजी से पश्चिम की ओर ढलता सूर्य आकाश से ओझल हो जाएगा, तो यरूशलेम के अनुग्रह का दिन समाप्त हो जाएगा। जब जुलूस ओलिवेट की चोटी पर ठहरा हुआ था, तब भी यरूशलेम के लिए पश्चाताप करने में अभी देर नहीं हुई थी। तब दया का स्वर्गदूत अपने पंख समेट रहा था स्वर्ण सिंहासन से उतरने को, ताकि न्याय और शीघ्र आने वाले न्यायाधीश को स्थान दे। पर मसीह का महान प्रेम भरा हृदय अभी भी यरूशलेम के लिए विनती कर रहा था, जिसने उसकी दयाओं का तिरस्कार किया, उसकी चेतावनियों को नापसंद किया और जो अपने हाथ उसके लहू से रंगने को थी। यदि यरूशलेम बस पश्चाताप कर लेती तो अभी देर नहीं हुई थी। जब अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें मंदिर, मीनार और शिखर पर ठहर रही थीं, तो क्या कोई भला स्वर्गदूत उसे उद्धारकर्ता के प्रेम तक न ले जाए और उसके विनाश को टाल न दे? सुंदर और अपवित्र नगर, जिसने नबियों को पत्थरों से मारा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार किया, जो अपने अप्रायश्चित के कारण स्वयं को बंधन की बेड़ियों में जकड़ रही थी, उसकी दया का दिन लगभग समाप्त हो चुका था। डिजायर ऑफ एजेस 576 एंड 578।
जैसा कि यशायाह ने अध्याय 22 में यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध का वर्णन किया है, हमलावर द्वार पर युद्ध व्यूह में खड़े हो जाते हैं। एलाम और कीर शस्त्रों से सुसज्जित होकर द्वार पर हैं और तब वे यरूशलेम का आवरण खोज लेते हैं। यशायाह में द्वार पर शत्रुओं द्वारा खोजा गया ये आवरण मिस्र की छाया है।
हाय उन विद्रोही पुत्रों पर, प्रभु कहता है, जो परामर्श तो लेते हैं पर मुझसे नहीं, और जो आवरण से अपने को ढकते हैं पर मेरी आत्मा से नहीं, ताकि वे पाप पर पाप जोड़ें, जो मिस्र को उतरने के लिए निकलते हैं और मेरे मुख से नहीं पूछते कि वे फिरौन की शक्ति में अपने को दृढ़ करें और मिस्र की छाया पर भरोसा रखें। यशाया 30:1-2।
यरूशलेम के शत्रु ये पहचानते हैं कि शेबना द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों ने अपना भरोसा मिस्र पर रखा है, ये सोचते हुए कि मिस्र उनकी रक्षा करेगा, जबकि हिल्किया के पुत्र एलियाकीम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोग मिस्र की छाया पर भरोसा नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के आवरण से आच्छादित है और परम प्रधान की छाया पर भरोसा करते हैं।
जो सर्वोच्च के गुप्त स्थान में निवास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे ठहरा रहेगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 91:1-2।
रविवार के कानून के संकट के समय बुद्धिमान कुंवारियां, जिनका प्रतिनिधित्व हिल्किया के पुत्र एलियाकीम करते हैं, परम प्रधान की छाया पर भरोसा कर रही हैं, और मूर्ख कुंवारियां, जिनका प्रतिनिधित्व शेबना करता है, मिस्र की छाया पर भरोसा कर रही हैं।
डिस्कवर्ड के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ नंगा कर देना और बंदी बनाकर ले जाना है। द्वार पर खड़े शत्रु समझ लेते हैं कि यरूशलेम की सुरक्षा हटा दी गई है और तब शेबना और उसके साथी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वे दाऊद के नगर की दरारें देखते हैं और देखते हैं कि बहुत सी दरारें हैं जो शत्रु को भीतर प्रवेश करने देंगी। घबराहट में, जैसा कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत में दिखाया गया है, मूर्ख कुंवारियां सुरक्षा की तलाश करने लगती है, पर उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती।
शेबना अपनी रक्षा के लिए जंगल के कवच की ओर देखता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो यरूशलेम के घरों की गिनती करता है और दीवार को मजबूत करने के लिए उन्हें गिराना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे निचले तालाब का पानी इकट्ठा करते हैं और उसे पुराने तालाब के पानी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पानी, जो पवित्र आत्मा का एक प्रमुख प्रतीक है, ये दर्शाता है कि वे तेल के लिए बेताबी से खोज रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अपनी सारी कोशिशों में वे तालाबों के सृजनकर्ता को भूल गए, और ये भी कि उसने बहुत समय पहले उन सत्य के तालाबों को बनाया था। वे ये भूल गए कि प्राचीन काल में संदेश प्रदान करने वाला युगों की चट्टान ही था। उन्होंने पुराने मार्गों पर चलना नहीं चुना, जिनका प्रतिनिधित्व विलियम मिलर के कार्य से स्थापित की गई नींवों ने किया था।
शत्रु हमारे भाइयों और बहनों का मन उस कार्य से हटाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें एक प्रजा को तैयार करना है जो इन अंतिम दिनों में दृढ़ता से खड़ी रह सके। उसकी कपटपूर्ण युक्तियाँ मनों को इस समय के खतरों और कर्तव्यों से दूर ले जाने के लिए बनाई गई हैं। वे उस प्रकाश को कुछ नहीं समझते जिसे मसीह अपने लोगों के लिए यूहन्ना को देने स्वर्ग से आए थे। वे ये सिखाते हैं कि हमारे सामने ही जो घटनाएं हैं, वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्हें विशेष ध्यान दिया जाए। वे स्वर्गीय मूल की सच्चाई को अप्रभावी कर देते हैं और परमेश्वर के लोगों से उनका पूर्व अनुभव छीन लेते हैं और उसके स्थान पर उन्हें झूठा विज्ञान दे देते हैं। यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और पुराने पथों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कहाँ है और उसी में चलो। यिर्मयाह 6:16। हमारे विश्वास की नींवों को कोई उखाड़ फेंकने का प्रयत्न न करे। वे नींव जो हमारे कार्य के प्रारंभ में वचन के प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और प्रकाशना के द्वारा डाली गई थीं, इन्हीं नींवों पर हम पिछले 50 वर्षों से निर्माण करते आ रहे हैं। लोग ये मान सकते हैं कि उन्हें कोई नया मार्ग मिल गया है और वे पहले से डाली गई नींव से भी अधिक मजबूत नींव डाल सकते हैं, परंतु ये एक बड़ा धोखा है। जो नींव पहले ही डाली जा चुकी है, उसके सिवाय कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अतीत में अनेक लोगों ने नए धर्म का निर्माण, नए सिद्धांतों की स्थापना का प्रयत्न किया है, पर उनका ये निर्माण कितने समय तक टिक पाया, वो शीघ्र ही ढह गया, क्योंकि उसकी नींव शिला पर नहीं रखी गई थी। क्या आरंभिक शिष्यों को मनुष्यों के कथनों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्हें झूठे सिद्धांत सुनने नहीं पड़े और फिर सब कुछ कर चुकने के बाद ये कहते हुए दृढ़ खड़े नहीं रहना पड़ा? जो नींव रखी जा चुकी है, उसके सिवा कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं रख सकता। 1 कुरिन्थियों 3:11। अतः हमें अपने प्रारंभिक विश्वास को अंत तक दृढ़ता से थामे रखना है। सामर्थ्यपूर्ण वचन परमेश्वर और मसीह द्वारा इस प्रजा के पास भेजे गए हैं, जो उन्हें संसार से निकालकर बिंदु दर बिंदु वर्तमान सत्य के स्पष्ट प्रकाश में ले आए हैं। पवित्र अग्नि से छुए हुए होंठों से परमेश्वर के सेवकों ने संदेश की घोषणा की है। दिव्य वाणी ने घोषित किए गए सत्य की प्रामाणिकता पर अपनी मुहर लगा दी है। टेस्टिमोनीज Vol. 8 296-297।
वो दिन जिसमें ये सब घटित होता है, बाइबल का वही दिन है जिसे यशाया इस रूप में पहचानते हैं कि सेनाओं के प्रभु परमेश्वर ने रोने, विलाप करने, सिर मुंडाने और टाट कसने का आह्वान किया था।
और यहोवा ने मूसा से कहा, इस 7वें महीने के 10वें दिन भी प्रायश्चित का एक दिन होगा। वो तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा होगी और तुम अपने प्राणों को दीन करोगे और यहोवा के लिए आग में चढ़ाई जाने वाली भेंट अर्पित करोगे, और उसी दिन कोई काम न करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने प्रायश्चित किया जाए। जो कोई प्राणी उस दिन अपने आप को दीन नहीं करेगा, वो अपने लोगों में से अलग कर दिया जाएगा, और जो कोई प्राणी उसी दिन कोई काम करेगा, मैं उस प्राणी को उसके लोगों में से नाश कर दूंगा। तुम कोई प्रकार का काम न करना, ये तुम्हारी पीढ़ियों भर तुम्हारे सब निवास स्थानों में सदा के लिए एक विधि होगी। ये तुम्हारे लिए विश्राम का सप्त होगा
और तुम अपने प्राणों को दीन करोगे। महीने के नौवें दिन की संध्या से संध्या तक तुम अपना सप्त मानोगे। लैद व्यवस्था 23 धन्यत धन्यत नुंदु दवी।
वो दिन जिसका चित्रण शेबना और हिल्किया के पुत्र एलियाकीम द्वारा किया गया है प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित का दिन है, जो 1844 से लेकर मीकाएल के खड़ा होने तक के इतिहास को समेटता है। उस अवधि में एडवेंटवाद को अपने प्राणों को दीन करने के लिए बुलाया गया है, या जैसा कि यशाया व्यक्त करता है, ये रोने, विलाप करने, मुंडन करने और टाट कमर में बांधने का आह्वान है।
1994 में हमारे महान महायाजक ने स्वर्गीय पवित्र स्थान के पवित्रतम स्थान में प्रवेश किया, अन्वेषणात्मक न्याय का कार्य आरंभ करने के लिए। धर्मी मृतकों के मामले परमेश्वर के समक्ष समीक्षा के लिए आते रहे हैं। जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो जीवितों पर न्याय घोषित किया जाएगा। ये गंभीर क्षण कितने मूल्यवान, कितने महत्वपूर्ण हैं। हम में से प्रत्येक का एक मामला स्वर्गीय न्यायालय में लंबित है। हम में से प्रत्येक का न्याय शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार किया जाएगा। प्रतीकात्मक सेवा में जब पृथ्वी की पवित्र स्थान के पवित्रतम स्थान में महायाजक द्वारा प्रायश्चित का कार्य किया जाता था, तो लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे परमेश्वर के सामने अपनी आत्माओं को दीन करें और अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो और वे मिटा दिए जाएं। क्या इस प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित के दिन में, जब मसीह ऊपर के पवित्र स्थान में अपनी प्रजा के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और हर मामले पर अंतिम अपरिवर्तनीय निर्णय सुनाया जाना है, हमसे इससे कम अपेक्षा की जाएगी?
इस भयावह और गंभीर समय में हमारी स्थिति क्या है? हाय, कलीसिया में कैसा अहंकार प्रबल है, कैसी कपटता, कैसा छल, वस्त्रभूषण का कैसा प्रेम, हल्कापन और मनोरंजन में कैसी लिप्तता और श्रेष्ठता की कैसी लालसा। इन सब पापों ने मन पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि हम शाश्वत बातों को पहचान नहीं पाए हैं। क्या हम पवित्र शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, ताकि जान सकें कि इस संसार के इतिहास में हम कहाँ हैं? क्या हम उस कार्य के विषय में जो इस समय हमारे लिए किया जा रहा है, और उस स्थिति के विषय में जिसे पापी होने के नाते हमें ग्रहण करना चाहिए जब ये प्रायश्चित का कार्य आगे बढ़ रहा हो, उचित समझ नहीं प्राप्त करेंगे? यदि हमें अपनी आत्माओं के उद्धार की कोई परवाह है, तो हमें एक ठोस परिवर्तन करना होगा। हमें सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु को खोजना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के गहरे खेद के साथ अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, ताकि वे मिटा दिए जाएं। चयनित संदेश, पुस्तक 1, 1962-1925।
और उस दिन सेनाओं के प्रभु परमेश्वर ने रोने, विलाप करने, सिर मूंढने और टाट कमर में बांधने के लिए बुलाया। पर देखो, आनंद और हर्ष, बैलों का वध और भेड़ों का वध, मांस खाना और दाख मधु पीना। आओ, हम खाएं और पिए, क्योंकि कल हम मरेंगे। यशाया 22:12-13।
प्रभु ने शेबना को अपने प्राण को दीन करने के लिए बुलाया, पर उसने खाना पीना और जश्न मनाते रहना चुना। प्रभु ने उसके कानों में ये प्रकट किया कि शेबना के पाप का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा। शुद्ध किया जाना के रूप में अनुदित शब्द वही है जो लैव्य व्यवस्था में प्रायश्चित के लिए प्रयुक्त होता है। लाओदिकियाई एडवेंटिज्म का ये पाप प्रायश्चित नहीं किया जाएगा। अब यशाया, शेबना, लाओदिकियाई एडवेंटिस्ट और हिल्किया के पुत्र एलियाकीम फिलाडेल्फियाई एडवेंटिस्ट के आपसी संबंध पर बात करना आरंभ करते हैं।
शेबना कोषाध्यक्ष है, जैसे यहूदा था, और नहेमायाह के दिनों में तोबिया परमेश्वर के पवित्र स्थान में उस कोठरी कोषागार में रह रहा था जहां भेंटे रखी जानी थीं। जब नहेमायाह ने मंदिर को शुद्ध किया, तो उसने तोबिया और उसका सामान बाहर निकाल दिया। शेबना को भी बाहर फेंका जाना है। दोनों रविवार के कानून के समय लाओदिकियाई एडवेंटिज्म के उगलकर बाहर निकाल दिए जाने का उदाहरण है।
इसराइल के प्रति अम्मोनियों और मोआबियों की क्रूरता और विश्वासघात के कारण परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये घोषित किया था कि उन्हें उसकी प्रजा की सभा से सदा के लिए बाहर रखा जाए। देखे व्यवस्था विवरण 23:3-6। इस वचन की अवहेलना करते हुए महायाजक ने परमेश्वर के घर के कक्ष में रखी गई भेंटों को बाहर निकाल दिया था, ताकि इस निषिद्ध जाति के प्रतिनिधि के लिए स्थान बनाया जा सके। परमेश्वर और उसके सत्य के इस शत्रु पर ऐसा अनुग्रह करके परमेश्वर के प्रति इससे बढ़कर तिरस्कार नहीं दिखाया जा सकता था।
फारस से लौटने पर नहेमायाह को उस निर्लज्ज अपवित्रीकरण का पता चला, और उन्होंने घुसपैठिए को निकाल बाहर करने के लिए तत्काल कदम उठाए। यह बात मुझे अत्यंत शोक हुई, वे कहते हैं, इसलिए मैंने तोबिया का सारा गृहस्थी का सामान उस कक्ष से बाहर फेंक दिया। तब मैंने आज्ञा दी और उन्होंने कक्षों को शुद्ध किया, और वहां मैंने फिर से परमेश्वर के भवन के पात्र, अन्न बलि और लोबान लाकर रखे।
मंदिर को न केवल अपवित्र किया गया था, बल्कि चढ़ावों का भी दुरुपयोग हुआ था। इससे लोगों की उदारता हतोत्साहित हो गई थी। उन्होंने अपना जोश और उत्साह खो दिया था, और वे दशमांश देने में अनिच्छुक थे। प्रभु के घर के कोषागारों में पर्याप्त निधि नहीं थी। मंदिर सेवा में नियुक्त अनेक गायक और अन्य लोग पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण परमेश्वर के कार्य को छोड़कर कहीं और काम करने चले गए थे। भविष्यद्वक्ता और राजा 670।
शेबना, यहूदा और तोबिया सभी अंत समय में लाओदीकियाई एडवेंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सेनाओं के प्रभु परमेश्वर यूं कहते हैं,
जा, इस कोषाध्यक्ष अर्थात शेबना जो राजभवन का अधिकारी है के पास और कह, यहाँ तेरे पास क्या है और यहाँ तेरे कौन है कि तूने अपने लिए यहाँ एक समाधि काट निकाली है, जैसे कोई ऊंचे स्थान पर अपने लिए समाधि काटता है और चट्टान में अपने लिए निवास स्थान तराशता है। देख, प्रभु तुझे प्रबल बंदीगिरी में उठा ले जाएगा और अवश्य ही तुझे कसकर लपेट लेगा। वो निश्चय ही तुझे बल से घुमाकर किसी बड़े देश में गेंद की तरह उछालकर फेंक देगा। वहां तू मरेगा और वहां तेरी महिमा के रथ तेरे स्वामी के घर की लज्जा बनेंगे, और मैं तुझे तेरे पद से हटा दूंगा और तेरी पदवी से वो तुझे नीचे गिरा देगा। यशाया 22:15-19।
जब उत्तर का राजा यरूशलेम के निकट आ रहा है तो ये याद रखना चाहिए कि ये आगमन क्रमिक था, जिसकी आहट यरूशलेम के नागरिकों को थी। यही बात यशायाह अध्याय 20 में पहचान की गई है, जब अश्शूर के सेनापति तर्तान ने मिस्र में अश्दोद को जीत लिया। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, और शेबना ने अपना समय अपने लिए एक भव्य कब्र बनवाने में लगाया। पुरातत्वविदों ने शेबना की कब्र खोज निकाली और कब्र के प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख था उसे निकाल लिया। वो अब एक ब्रिटिश संग्रहालय में है। आश्चर्यजनक रूप से जब शेबना को हटाया गया और हिल्कियाह पुत्र एलियाकीम ने शेबना का नेतृत्व पद संभाला, तो हिल्कियाह के पुत्र एलियाकीम को एक राजकीय मुहर मिली, जिससे वो आधिकारिक दस्तावेजों पर अपने नाम की मुहर लगा सकता था। वो मुहर भी पुरातत्वविदों को मिली और इंग्लैंड में उसी संग्रहालय में है। संग्रहालय में शेबना का प्रतिनिधित्व उसकी कब्र मृत्यु के चिन्ह से होता है, और हिल्कियाह का पुत्र एलियाकीम उसी संग्रहालय में जीवन की मुहर के प्रतीक से प्रस्तुत है। उत्तर के राजा के विषय में चेतावनी संदेश को अस्वीकार करने के कारण शेबना को प्रभु के मुख से उगल दिया गया, और प्रकाशित वाक्य में लाओदिकिया के लिए दी गई चेतावनी में स्प्यूड के रूप में अनुदित शब्द का वास्तविक अर्थ तीव्र वेग से उछालकर उल्टी करना है। नहेमिया के साथ उसने तोबिया और उसका सामान बाहर फेंक दिया, और शेबना के साथ वो गेंद की तरह दूर देश में हिंसक रूप से उछालकर फेंका गया। शेबना वे लाओदिकिया के एडवेंटिस्ट हैं जो 1989 में जिसकी मुहर खोली गई थी उस भविष्यवाणी संदेश को अस्वीकार कर रहे हैं और कब्र अर्थात पशु के चिन्ह के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हिल्किया का पुत्र एलियाकी वो फिलाडेल्फिया एडवेंटिज्म है जो परमेश्वर की मुहर प्राप्त करता है।
और उस दिन ऐसा होगा कि मैं अपने दास एलियाकीम हिल्किया के पुत्र को बुलाऊंगा, और मैं उसे तेरे वस्त्र पहनाऊंगा और तेरी कमरबंद से उसे बल दूंगा और तेरा शासन भार उसके हाथ में सौंप दूंगा, और वो यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के घराने का पिता होगा। यशाया 22:20-21।
रविवार के कानून के समय एडवेंटवाद के गेहूं और खरपतवार अलग कर दिए जाते हैं, और विजयी कलीसिया का नेतृत्व हिल्कियाह के पुत्र एलियाकीम को दिया जाता है, और तब प्रभु अपनी कलीसिया को एक ध्वज की तरह ऊंचा उठाता है, क्योंकि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश बढ़कर एक जोरदार पुकार बन जाता है। हो सकता है कि मैं हिल्कियाह का पुत्र वाक्यांश जोड़कर कुछ अधिक दोहरावपूर्ण हो गया हूँ, जबकि मैं केवल एलियाकीम कह सकता था, परंतु पिता और उसकी संतान मिलकर सात अंतिम विपत्तियों से पहले के एलियाह संदेश का एक प्रतीक हैं। एलियाह का संदेश प्रथम पिता और अंतिम पुत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए पिता और बच्चों की प्रतीक भाषा का उपयोग करता है। ये भविष्यद्वाणीय संबंध अध्याय 22 की अंतिम पहेलियों में योगदान देता है। हिल्कियाह के पुत्र एलियाकीम से ये प्रतिज्ञा की गई है
कि प्रभु उसके कंधे पर दाऊद के घराने की कुंजी रखेगा।
दाऊद का घराना पिता और पुत्र का वही संदेश है जिसका उल्लेख यीशु ने विद्रोही यहूदियों से अपनी अंतिम बातचीत में किया था, और इसी के साथ वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का समापन भी करते हैं। दाऊद के घराने के पास एक कुंजी थी जो यदि और किसी संदर्भ में नहीं तो 22 अक्टूबर 1844 को प्रयुक्त हुई थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस कुंजी का उल्लेख केवल फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिए गए संदेश में मिलता है।
और दाऊद के घर की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा, तब वो खोलेगा और कोई बंद नहीं करेगा, और वो बंद करेगा और कोई खोलेगा नहीं। यशाया 22:22।
और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें वो कहता है जो पवित्र है, जो सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो खोलता है और कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करता है और कोई खोल नहीं सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख, मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रख दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास थोड़ा सा बल है और तूने मेरा वचन माना है और मेरे नाम से इनकार नहीं किया है। देख, शैतान की सभा के उनमें से जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर झूठ बोलते हैं, देख, मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांवों के सामने दंडवत करें और ये जान ले कि मैंने तुझसे प्रेम किया है, क्योंकि तूने मेरे धैर्य के वचन को माना है। इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा की घड़ी से बचाए रखूंगा जो सारे संसार पर आने वाली है, ताकि पृथ्वी पर बसने वालों की परीक्षा हो। देख, मैं शीघ्र आता हूँ, जो तेरे पास है उसे दृढ़ता से थामे रह, ताकि कोई तेरा मुकुट न छीन ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न जाएगा, और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर कर आता है लिखूंगा, और मैं उस पर अपना नया नाम भी लिखूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:7-12।
एलियाकीम मिलरवादी आंदोलन के समय के एक फिलाडेल्फियाई का प्रतिनिधित्व करता है जो 22 अक्टूबर 1844 को परम पवित्र स्थान खोलता है। मैं जानता हूं कि वही हमारे महायाजक मसीह थे जिन्होंने उस व्यवस्था काल का द्वार खोला, परंतु मसीह ने हिल्किया के पुत्र एलियाकीम के कंधे पर कुंजी रखी और ये घोषित किया कि वो खोलेगा। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जिसका उल्लेख मैंने इस लेख की शुरुआत में किया था।
यशाया में हमें बोझ शब्द 18 बार मिलता है, परंतु उनमें से 7 बार ये कंधे पर उठाई जाने वाली वस्तु का संकेत करता है और 11 बार ये विनाश की भविष्यवाणी को दर्शाता है। उन 18 में से एक बार ऐसा भी है कि विनाश की भविष्यवाणी का अर्थ रखने वाला यही शब्द साथ ही साथ कंधे पर उठाए जाने वाले बोझ का भी प्रतिनिधित्व करता है।
दर्शन की तराई का वृत्तांत उस विनाश के संदेश के बारे में है जो यरूशलेम में उपासकों को 2 वर्गों में बांट देता है। वो भविष्यद्वाणी का संदेश जिसने न्याय के आरंभ को चिन्हित किया था फादर मिलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और वो प्रथम स्वर्गदूत का संदेश था जो 22 अक्टूबर 1854 को जब पवित्र स्थान का द्वार बंद हुआ और महापवित्र स्थान खुला तब समाप्त हो गया। विलियम मिलर के कंधे पर रखा गया वो भार जिसे विश्व तक पहुंचाने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था प्रथम स्वर्गदूत का संदेश ही था, विनाश की एक भविष्यवाणी जो 22 अक्टूबर 1854 को तृतीय स्वर्गदूत का संदेश आने पर समाप्त हुई।
दाऊद के घर की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा, और कहा गया है उस दिन पक्की जगह में ठोंकी हुई कील निकाल दी जाएगी, काट दी जाएगी और गिर जाएगी, और जो बोझ उस पर था वो काट कर हटा दिया जाएगा।
यहाँ बर्डन के रूप में अनुदित शब्द वो शब्द है जो अनिष्ट की भविष्यवाणी को सूचित करता है, पर ये अनिष्ट की भविष्यवाणी वो हिब्रू शब्द नहीं है जिसका प्रयोग आइज़ाया कंधे पर ढोई जाने वाली किसी वस्तु के लिए करते हैं। अनिष्ट की भविष्यवाणी अर्थ वाले शब्द के रूप में इसका मतलब है कि हिल्किया के पुत्र एलियाकीम के कंधे पर डेविड की कुंजी रखी जाएगी, और उसके कंधे पर जो भार है वो अनिष्ट की भविष्यवाणी है। ये शब्दों का गूढ़ खेल है।
सिस्टर वाइट बाइबल से जुड़ी हुई एक चाबी के बारे में ये कहती है,
परमेश्वर के वचन से जुड़ी एक कुंजी है जो बहुमूल्य संदूक को खोल देती है हमारे संतोष और आनंद के लिए। मैं प्रकाश की हर किरण के लिए कृतज्ञ हूँ। भविष्य में जो अनुभव अभी हमें अत्यंत रहस्यमय लगते हैं वे स्पष्ट किए जाएंगे। कुछ अनुभवों को हम शायद कभी पूरी तरह न समझ पाएं जब तक ये नश्वर अमरत्व न धारण कर ले,
पांडुलिपि प्रकाशन खंड 17 261।
मिलर द्वारा अपने सपने के बारे में की गई प्रारंभिक टिप्पणियां ये कहती है,
मैंने स्वप्न देखा कि परमेश्वर ने एक अदृश्य हाथ से मुझे एक विलक्षण बड़े कौशल से बनाई गई पेटिका भेजी जो लगभग 10 इंच लंबी और 6 इंच चौकोर थी, आबनूस की बनी थी और उसमें मोतियों की बारीकर जड़ाई की गई थी। उस पेटिका पर एक चाबी लगी हुई थी। मैंने तुरंत चाबी ली और पेटिका खोली। तब मेरे आश्चर्य और विस्मय के लिए मैंने पाया कि वो हर प्रकार और आकार के रत्नों, हीरों, बहुमूल्य पत्थरों और हर माप और मूल्य के सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी, जो पेटिका में अपनी अपनी जगहों पर सुंदरता से सजे हुए थे। और इस तरह सजे हुए वे ऐसा प्रकाश और महिमा प्रतिबिंबित कर रहे थे जिसकी बराबरी केवल सूर्य कर सकता था। अर्ली राइटिंग्स 81।
जेम्स व्हाइट के स्वप्न की पाद टिप्पणियों में वे चाबी के बारे में ये कहते हैं,
संलग्न कुंजी भविष्यद्वाणी वचन की व्याख्या करने का उनका तरीका था। शास्त्र की तुलना शास्त्र से करना, बाइबल स्वयं अपनी व्याख्याकार है। इसी कुंजी से भाई मिलर ने पेटिका अर्थात आगमन के महान सत्य को संसार के सामने खोल दिया।
जेम्स व्हाइट ने इस स्वप्न पर टिप्पणी की
और ऐसा करते हुए उन्होंने एक प्रस्तावना लिखी। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मिलर ने अपना ये स्वप्न 1857 में देखा और प्रकाशित किया, जो महान निराशा के कम 2 वर्ष बाद था, जब पहले से एकजुट मिलेराइट एडवेंटिस्ट बिखर चुके थे, मिलर आंदोलन से अलग हो गए थे, और छोटा झुंड जो दूर दूर बिखरा हुआ था वो अब भी उस निराशा से पीड़ित था। मिलर के स्वप्न ने उस परिस्थिति को संबोधित किया और जेम्स व्हाइट ने उस पर टिप्पणी की और एलन व्हाइट ने उसका उल्लेख पूरी तरह सकारात्मक रूप में किया। जेम्स व्हाइट ने उस स्वप्न के लिए एक प्रस्तावना लिखी, उसमें स्वप्न को शामिल किया और फिर कुछ पाद टिप्पणियां जोड़ी। इस जानकारी तक पहुंच चाहने वालों के लिए उनकी प्रस्तावना, वो स्वप्न और पाद टिप्पणियां इस लेख के अंत में दी जाएंगी।
यशाया 22 एडवेंटवाद के आरंभ और अंत का एक चित्रण है। दोनों इतिहासों में एक विभाजन था और होगा, जो 22 अक्टूबर 1844 को घटित हुआ और फिर रविवार के कानून के समय फिर से होगा। दोनों अवसरों में, आरंभ और अंत में, ये विभाजन 10 कुंवारियों के दृष्टांत की पूर्ति है। बहन व्हाइट हमें बताती हैं कि मूर्ख कुंवारियां लाओदिकियाई हैं। शेबना एडवेंटवाद के आरंभ और अंत में लाओदिकियाई एडवेंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करता है। एलियाकीम, हिल्कियाह का पुत्र, फिलाडेल्फियाई एडवेंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करता है।
परंतु हिल्किया भी एडवेंटिज्म के पिता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के घराने का पिता होगा। विलियम मिलर को आदरपूर्वक फादर मिलर कहा जाता था। मिलर के कंधे पर दाऊद की कुंजी रखी गई थी, जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की उनकी विधि का प्रतिनिधित्व करती है। पंक्ति पर पंक्ति,
संदूक अर्थात बाइबल होने के कारण उसने दाऊद की कुंजी, जो भविष्यवाणी की व्याख्या के नियमों का प्रतिनिधित्व करती थी, का सहारा लिया और उन्हीं नियमों से उसने पहले स्वर्गदूत की सच्चाइयों को खोला। वे नियम दाऊद की कुंजी और उसकी विनाश की भविष्यवाणी भार, जिसे दाऊद की कुंजी से समझा गया था, पवित्र स्थान में पक्की जगह में कील की तरह टांगे गए। वो कील 22 अक्टूबर 1844 की तिथि थी। कील शब्द का अर्थ पिन, कील या खूंटा होता है, जो एक मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। वो भार अर्थात विनाश की भविष्यवाणी जो उस कील पर टांगी गई थी, पहले स्वर्गदूत का संदेश था, और वो संदेश 22 अक्टूबर 1844 को अपने निष्कर्ष पर पहुंचा, जब विनाश की वो भविष्यवाणी पूरी हो गई और उसे हटा दिया गया, काट दिया गया और वो गिर पड़ा। उसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि विनाश का वो भविष्य सूचक संदेश अतीत हो चुका था, और तब उस कील को अत्यंत पवित्र स्थान में ले जाना पड़ा, जहां उस पर विनाश का एक और भार टांगा जाना था। मिलर की विनाश की भविष्यवाणी, जिसे दाऊद की कुंजी के रूप में निरूपित भविष्यवाणी के नियमों द्वारा समझा गया था, पवित्र स्थान में एक ऐसी कील गाड़ेगी जो उसके पिता के घर की सारी महिमा को थामे रखेगी। उस अंश में महिमा शब्द का अर्थ भार है। किसी घर का भार जो चीज संभालती है, वो उस घर की नींव होती है। मिलर का मूलभूत कार्य तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के संतान और वंश द्वारा निरूपित समस्त अतिरिक्त प्रकाश का भार संभालता है। ये मंदिर के विविध पात्रों का सारा भार संभालता है,
और एक महिमामय सिंहासन स्थापित करने के लिए एक मंदिर की नींव रखी गई थी।
हिल्किया का पुत्र एलियाकिम फिलाडेल्फिया की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। एलियाकिम का अर्थ है उत्थान का परमेश्वर, क्योंकि यरूशलेम के पिता एलियाकिम विलियम मिलर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उपयोग परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई वाचा की प्रजा की नींवों को पुनः स्थापित करने के लिए किया। वो हिल्किया का पुत्र है। ये नाम दो शब्दों से निकला है, दूसरा परमेश्वर और पहला मृदुता, जैसे बोलने में मृदुता। हिल्किया परमेश्वर के वचन या स्वर का प्रतिनिधित्व करता है और उसका पुत्र मंदिर की स्थापना का प्रतिनिधित्व करता है।
एडवेंटवाद के अंत में विनाश की एक भविष्यवाणी अवश्य होनी चाहिए, और वो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 14 का तीसरा स्वर्गदूत है। अंत में एक कुंजी अवश्य होनी चाहिए, जिसका प्रतीक मिलर की कुंजी थी। हमारे दिनों में कुंजी इतिहास की पुनरावृत्ति पर आधारित है, और विशेष रूप से प्रथम उल्लेख के नियम पर, जो उस सिद्धांत को समाहित करता है, या वही सिद्धांत है जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं मसीह ने अल्फा और ओमेगा के रूप में किया है। मिलर का एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, तब पिता के रूप में मिलर हिल्कियाहा यहोवा का वचन हो जाता है, और मिलर का पुत्र एलियाकीम है, जिसका अर्थ उठाने का परमेश्वर है। पिता मिलर ने मंदिर को उठाया, और मिलर का पुत्र ये चिन्हित करता है कि कब लाओदिकिया और फिलाडेल्फिया अलग किए जाते हैं, और फिलाडेल्फिया वासी एक निशान के समान उठाए जाते हैं। एक खूंटी अवश्य हो जो ठोंकी जाए, परंतु मिलर के इतिहास में जैसे पवित्र स्थान में नहीं, बल्कि महापवित्र स्थान में। वो खूंटी और उस पर टांगा गया बोझ तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के अंत में काट दिया जाएगा, जैसे कि पहले स्वर्गदूत के संदेश के अंत में हुआ था, जब मीकाएल खड़ा होगा और मानव के अनुग्रह काल का समापन होगा। तब विनाश की भविष्यवाणी अतीत हो जाएगी, हटा दी जाएगी, काट दी जाएगी और गिर पड़ेगी।
144 में समय के बीत जाने के बाद जो विभाजन या बिखराव हुआ, वो रविवार के कानून के समय फिर से दोहराया जाएगा। यशाया 22 उन परिस्थितियों का चित्रण है जो रविवार के कानून के संकट में घटित होने वाले लाओदिकिया के एडवेंटिस्टों और फिलाडेल्फिया के एडवेंटिस्टों के बीच के अलगाव की ओर ले जाती है।
और लौदिकियों की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी और परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ, कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म। सो क्योंकि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। क्योंकि तू कहता है, मैं धनी हूँ और संपत्ति से संपन्न हो गया हूँ और मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं, और तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, दयनीय, दरिद्र, अंधा और नंगा है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपा हुआ सोना मोल ले, ताकि तू धनी बन जाए, और श्वेत वस्त्र भी, ताकि तू वस्त्र पहने और तेरी नग्नता की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आँखों में अंजन लगा, ताकि तू देख सके। जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ, उन्हें मैं डांटता और ताड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साही बन और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जिसके कान हो, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:7-22।
स्वप्न की भूमिका के बाद जेम्स व्हाइट स्वप्न को पाद टिप्पणियों सहित सम्मिलित करते हैं। मुझे मिलर के स्वप्न के जेम्स व्हाइट द्वारा किए गए अनुप्रयोग से कोई आपत्ति नहीं है, यद्यपि हमने अक्सर मिलर के उसी स्वप्न की ऐसी व्याख्या प्रकाशित की है जो जेम्स व्हाइट की व्याख्या से कुछ भिन्न है। जेम्स व्हाइट का मूल दृष्टिकोण, जो हमारी प्रकाशित बातों से भिन्न है, ये है कि वे रत्नों को परमेश्वर की प्रजा के संदर्भ में रखते हैं, जबकि हमारा समझना ये है कि रत्न भविष्य सूचक सत्य है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि व्यक्ति वही प्रतिबिंबित करता है जो वो विश्वास करता है, और महान निराशा के बाद रत्नों का बिखरना रविवार के कानून से पहले परमेश्वर की प्रजा के बिखरने का प्रतीक है। परंतु ये तथ्य भविष्य के अध्ययन के लिए है।
विलियम मिलर के स्वप्न के लिए जेम्स व्हाइट की प्रस्तावना।
निम्नलिखित स्वप्न एडवेंट हेरल्ड में 2 वर्षों से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। तब मैंने देखा कि उसने हमारे अतीत के द्वितीय आगमन संबंधी अनुभव को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया और ये भी कि परमेश्वर ने वो स्वप्न बिखरी हुई भेड़ों के हित के लिए दिया था। प्रभु के महान और भयानक दिन के निकट आने के चिन्हों में परमेश्वर ने स्वप्नों को रखा है। देखिए योएल 2:28-31, प्रेरितों के काम 2:17-20। स्वप्न 3 प्रकार से आ सकते हैं। पहला, कामकाज की बहुतायत से, देखिए सभोपदेशक 5:3। दूसरा, जो शैतान की दुष्ट आत्मा और धोखे के अधीन हैं, वे उसके प्रभाव से स्वप्न देख सकते हैं, देखिए व्यवस्था विवरण 8:1-12, यिर्मयाहा 23:25-28, 27:9, 29:8, जकरिया 10:2, यहूदा 8। और तीसरा, परमेश्वर ने सदा अपने लोगों को स्वप्नों के द्वारा कभी अधिक कभी कम सिखाया है और आज भी सिखाता है। ये स्वप्न स्वर्गदूतों और पवित्र आत्मा के माध्यम से आते हैं। जो सत्य के स्पष्ट प्रकाश में खड़े हैं, वे जान लेंगे कि कब परमेश्वर उन्हें स्वप्न देता है, और ऐसे लोग झूठे स्वप्नों से धोखा नहीं खाएंगे और न भटकाए जाएंगे। और उसने कहा, अब मेरे वचन सुनो, यदि तुम्हारे बीच कोई नबी हो तो मैं यहोवा स्वयं को उसे दर्शन में प्रकट करूंगा और स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12:7। याकूब ने कहा, प्रभु के दूत ने मुझसे स्वप्न में कहा, उत्पत्ति 31:2, और परमेश्वर रात में स्वप्न में सीरियाई लाबान के पास आए, उत्पत्ति 31:24। उत्पत्ति 27:5-9 में यूसुफ के स्वप्न पढ़ें और फिर मिस्र में उनकी पूर्ति की रोचक कहानी पढ़ें। गिबोन में रात को स्वप्न में प्रभु सुलेमान के सामने प्रकट हुए, 1 राजा 3:5। दानियेल की पुस्तक के 2 अध्याय की महान और महत्वपूर्ण प्रतिमा स्वप्न में ही दी गई थी। इसी प्रकार 7 अध्याय के 4 पशु आदि भी। जब हेरोदेस शिशु उद्धारकर्ता को नष्ट करना चाहता था, तब यूसुफ को मिस्र भाग जाने के लिए स्वप्न में चेतावनी दी गई, मत्ती 2:13। और ये होगा कि अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:17। स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा भविष्यद्वाणी का वरदान यहाँ पवित्र आत्मा का फल है और अंतिम दिनों में एक चिन्ह ठहरने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकट किया जाएगा। ये सुसमाचार की कलीसिया के वरदानों में से एक है। और उसने कुछ को प्रेरित ठहराया, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और शिक्षक, पवित्र जनों को सिद्ध करने के लिए, सेवकाई के काम के लिए और मसीह की देह के निर्माण के लिए, इफिसियो 4:11-12। और परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ को नियुक्त किया है, प्रथम प्रेरित, द्वितीय क्रम में भविष्यद्वक्ता आदि, 1 कुरिन्थियों 7:28। भविष्यद्वाणियों को तुच्छ न जानो, 1 थिस्सलुनीकियों 5:20। साथ ही देखें प्रेरितों के काम 13:1-21:9, रोमियों 12:6-1 कुरिन्थियों 14:1-24:13-19। भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वाणियां मसीही की कलीसिया के निर्माण के लिए हैं और परमेश्वर के वचन से ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि उनका बंद हो जाना सुसमाचार प्रचारकों, चरवाहों और शिक्षकों के बंद हो जाने से पहले होना था। पर आपत्ति करने वाला कहता है, इतने अधिक झूठे दर्शन और स्वप्न हो चुके हैं कि मैं इस प्रकार की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। ये सच है कि शैतान की अपनी जालसाजियां होती हैं, उसके पास सदा से झूठे भविष्यद्वक्ता रहे हैं और निश्चय ही छल और अपनी विजय के इस उसके अंतिम समय में हम उनके होने की अपेक्षा कर सकते हैं। जो लोग केवल इसलिए ऐसे विशेष प्रकाशित वाक्यों को अस्वीकार करते हैं कि उनकी नकली नकलें भी मौजूद हैं, वे उतनी ही उचितता के साथ थोड़ा और आगे बढ़कर ये भी नकार सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी स्वप्न या दर्शन में मनुष्य पर स्वयं को प्रकट किया है, क्योंकि नकली तो सदा से मौजूद रही है।
स्वप्न और दर्शन वो माध्यम है जिनसे परमेश्वर ने मनुष्यों पर स्वयं को प्रकट किया है। इसी माध्यम से उसने भविष्यद्वक्ताओं से बात की, उसने भविष्यवाणी के वरदान को सुसमाचार की कलीसिया के वरदानों में रखा है और अंतिम दिनों के अन्य चिन्हों के साथ स्वप्नों और दर्शन को भी शामिल किया है। आमीन। उपरोक्त टिप्पणियों में मेरा उद्देश्य आपत्तियों का शास्त्रानुसार निवारण करना और निम्नलिखित के लिए पाठक के मन को तैयार करना रहा है। जेम्स व्हाइट, भाई मिलर का स्वप्न, 1:3।
विलियम मिलर का दूसरा सपना।
मैंने स्वप्न देखा कि ईश्वर ने किसी अदृश्य हाथ से मुझे एक अनोखे ढंग से निर्मित पेटिका भेजी
जो लगभग 10 इंच लंबी और 6 इंच चौकोर थी और जिस पर आबनूस तथा मोतियों की बारीक जड़ाई की गई थी। उस पेटिका से एक चाबी लगी हुई थी। मैंने तुरंत चाबी ली और पेटिका खोल दी। तब मेरे आश्चर्य और विस्मय के लिए मैंने देखा कि वो हर प्रकार और आकार के गहनों, हीरों, बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी के हर आकार और मूल्य के सिक्कों से भरी हुई थी, जो पेटिका में अपनी अपनी जगहों पर सुंदरता से सजे हुए थे। और इस प्रकार सजे हुए वे ऐसी ज्योति और महिमा बिखेर रहे थे जिसकी बराबरी केवल सूर्य ही कर सकता था।
मुझे ये अपना कर्तव्य नहीं लगा कि इस अद्भुत दृश्य का आनंद मैं अकेले लूं। यद्यपि उसकी सामग्री की चमक, सुंदरता और मूल्य से मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे की सेंटर टेबल पर रख दिया और ये सूचना दे दी कि जिसकी भी इच्छा हो वो आकर मनुष्य द्वारा इस जीवन में अब तक देखा गया सबसे महिमामय और दीप्तिमान दृश्य देख सकता है। लोग अंदर आने लगे, पहले तो गिनती के, पर धीरे धीरे भीड़ हो गई। जब वे पहली बार डिबिया में झांकते तो अचंभित होते और खुशी से चिल्ला उठते, लेकिन जैसे जैसे दर्शक बढ़े हर कोई रत्नों को उलट पलट करने लगा, उन्हें डिबिया से निकालकर मेज पर बिखेरने लगा। मुझे लगा कि मालिक मुझसे फिर डिबिया और रत्नों की मांग करेगा और यदि मैं उन्हें बिखरने देता तो मैं उन्हें फिर पहले की तरह उनकी जगह डिबिया में कभी नहीं रख पाऊंगा। और लगा कि मैं उस जवाबदेही को कभी निभा नहीं सकूंगा क्योंकि वो बहुत भारी होगी। तब मैं लोगों से विनती करने लगा कि उन्हें हाथ न लगाएं और न ही डिबिया से निकालें, पर जितना मैं विनती करता वे उतना ही ज्यादा बिखेरते और अब तो वे उन्हें पूरे कमरे में, फर्श पर और कमरे के हर फर्नीचर पर बिखेरते दिखाई देते थे। तब मैंने देखा कि असली गहनों और सिक्कों के बीच उन्होंने बेशुमार मात्रा में नकली गहने और जाली सिक्के बिखेर रखे थे। उनके निकृष्ट आचरण और कृतज्ञता पर मैं बेहद क्रोधित हुआ और इसके लिए उन्हें डांट फटकार लगाई, परंतु जितना अधिक मैं डांटता फटकारता उतना ही अधिक वे असली के बीच नकली गहने और जाली सिक्के बिखेरते जाते। तब मैं अपनी देहात्मा में खिंड हो उठा और उन्हें कमरे से बाहर निकालने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करने लगा, पर जैसे ही मैं एक को बाहर धकेलता तीन और अंदर आ जाते और गंदगी, बुरादा, रेत और तरह तरह का कूड़ा कचरा ले आते, यहाँ तक कि उन्होंने असली रत्नों, हीरों और सिक्कों को पूरी तरह ढक दिया जिससे वे सब नज़र से ओझल हो गए। उन्होंने मेरी पेटी को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके टुकड़े कूड़े में बिखेर दिए। मुझे लगा कि मेरे दुख या मेरे क्रोध की किसी को परवाह नहीं थी। मैं पूरी तरह निराश और हतोत्साहित हो गया और बैठकर रो पड़ा। यूं अपने बड़े नुकसान और जवाबदेही के कारण रोता और शोक मनाता हुआ मुझे परमेश्वर का स्मरण हुआ और मैंने गंभीरता से प्रार्थना की कि वो मेरी सहायता भेज दे। तुरंत दरवाज़ा खुला और एक आदमी कमरे में आया। तब वहां के सब लोग बाहर चले गए और उसके हाथ में झाड़ू था। उसने खिड़कियां खोली और कमरे की धूल और कूड़ा करकट झाड़ने लगा। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि वो रुक जाए क्योंकि कूड़े करकट के बीच कुछ अनमोल रत्न बिखरे पड़े थे। उसने मुझसे कहा कि डरो मत क्योंकि वो उनकी देखभाल करेगा। तब जब वो मिट्टी और कूड़ा करकट, नकली गहने और जाली सिक्के झाड़ रहा था, वे सब बादल की तरह उठे और खिड़की से बाहर चले गए और हवा उन्हें उड़ाकर ले गई। हलचल में मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उन्हें खोला तो सारा कूड़ा करकट गायब था। कीमती रत्न, हीरे, सोने और चांदी के सिक्के पूरे कमरे में प्रचुर मात्रा में बिखरे पड़े थे। तब उसने मेज पर एक पेटिका रखी जो पहले वाली से कहीं बड़ी और अधिक सुंदर थी और रत्न, हीरे, सिक्के मुट्ठी मुट्ठी करके समेट कर उन्हें पेटिका में डालता रहा जब तक एक भी बाकी नहीं रहा। हालांकि कुछ हीरे सुई की नोक से बड़े नहीं थे। तब उन्होंने मुझे आओ और देखो कहकर बुलाया। मैंने मंजूषा में झांका, पर वो दृश्य देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। वे अपनी पूर्व की शोभा से 10 गुना अधिक चमक रहे थे। मुझे लगा कि जिन दुष्ट लोगों ने उन्हें धूल में बिखेर कर रौंद डाला था उन्हीं के पैरों से वे रेत में रगड़ रगड़ कर मांज दिए गए थे। मंजूषा में वे सुंदर क्रम से सजे हुए थे, हर एक अपने स्थान पर, उन्हें उसमें डालने वाले व्यक्ति के किसी भी प्रत्यक्ष परिश्रम के बिना। मैं अत्यंत आनंद से चिल्लाया और उसी चिल्लाहट से मेरी नींद खुल गई। अर्ली राइटिंग्स 81-83।
जेम्स वाइट की पाद टिप्पणियां।
संदूक बाइबल के उन महान सत्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित हैं और जिन्हें संसार में प्रकाशित करने के लिए भाई मिलर को दिए गए थे।
लगी हुई चाबी भविष्यवाणी के वचन की व्याख्या करने का उसका तरीका था। पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करना। बाइबल स्वयं अपनी व्याख्याकार है। इसी चाबी से भाई मिलर ने संदूक अर्थात आगमन के महान सत्य को संसार के सामने खोल दिया।
लोग आने लगे। पहले तो संख्या कम थी, पर बढ़ते बढ़ते भीड़ हो गई। जब आगमन के सिद्धांत का पहली बार प्रचार भाई मिलर और कुछ गिने चुने अन्य लोगों ने किया तो उसका बहुत कम प्रभाव हुआ और बहुत ही कम लोग उससे जागे। पर 1840 से 1854 तक जहां जहां इसका प्रचार हुआ पूरा समुदाय जाग उठा।
हर प्रकार और आकार के रत्न हीरे आदि जो पेटिका में अपनी अपनी जगहों पर इतनी सुंदरता से सजाए गए थे परमेश्वर के बच्चों मलाखी 3:17 का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी कलीसियाओं से और जीवन के लगभग हर स्थान और परिस्थिति से थे जिन्होंने आगमन का विश्वास स्वीकार किया और जिन्हें सत्य के पवित्र कार्य में अपने अपने स्थानों पर निर्भीकता से डटे हुए देखा गया। जब वे इसी क्रम में चलते हुए प्रत्येक अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए और परमेश्वर के सामने नम्रतापूर्वक चलते थे तब उन्होंने संसार के लिए एक ज्योति और महिमा प्रतिबिंबित की जिसकी बराबरी केवल प्रेरितों के दिनों की कलीसिया कर सकती थी। वो संदेश रेवलेशन 14:6 मानो पवन के पंखों पर उड़ता हुआ गया और निमंत्रण आओ क्योंकि अब सब कुछ तैयार है लूक 14:17 सामर्थ्य और प्रभाव के साथ दूर दूर तक फैल गया।
जब उड़ने वाले स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 14:6-7 ने पहली बार अनंत सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया, परमेश्वर से डरो और उसको महिमा दो क्योंकि उसके न्याय की घड़ी आ पहुंची है, तो यीशु के आगमन और बहाली की आशा में बहुतों ने आनंद से जय जयकार की। परंतु वही लोग बाद में विरोध करने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे और उस सत्य का उपहास करने लगे जिसने कुछ ही समय पहले उन्हें आनंद से भर दिया था। उन्होंने रत्नों को अस्त व्यस्त कर बिखेर दिया। ये हमें 1844 की शरद ऋतु में ले आता है जब बिखराव का समय आरंभ हुआ। इस पर ध्यान दीजिए, रत्नों को बिखेरने वाले वही थे जिन्होंने कभी आनंद से जय जयकार की थी और 1844 से अब तक झुंड को इतनी प्रभावी रीति से किसी ने भी न तो बिखेरा और न भटकाया है जितना उन लोगों ने जिन्होंने कभी सत्य का प्रचार किया था और उसमें आनंदित हुए थे। परंतु तब से उन्होंने परमेश्वर के कार्य को और हमारे पूर्व आगमन संबंधी अनुभव में भविष्यवाणियों की पूर्ति को नकार दिया है।
भाई मिलर की गवाही 144 के 7वें महीने में हुई आधी रात की पुकार के बाद के कई महीनों तक ये थी कि दरवाज़ा बंद हो चुका था और कि आगमन आंदोलन भविष्यवाणी की पूर्ति था और कि समय का प्रचार करने में हम सही थे। तब उन्होंने एडवेंट हेरल्ड के माध्यम से अपने भाइयों को ये उपदेश दिया कि वे दृढ़ बने रहें, धैर्य रखें और एक दूसरे के विरुद्ध बैर न रखें और परमेश्वर शीघ्र ही समय का प्रचार करने के लिए उन्हें उचित ठहराएगा। इस तरह वो रत्नों के लिए पैरवी करता रहा जबकि वो उनके प्रति अपनी जवाबदेही महसूस करता रहा और कि यह अत्यंत भारी होगी।
नकली रत्न और जाली सिक्के जो असली के बीच बिखरे हुए थे स्पष्ट रूप से झूठे धर्मांतरितों या पराई संतान होशे 5:10 का प्रतिनिधित्व करते हैं जब से 1844 में द्वार बंद हुआ था।
दूसरा संदूक जो पहले वाले से कहीं बड़ा और अधिक सुंदर था जिसमें बिखरे हुए रत्न हीरे और सिक्के इकट्ठे किए गए जीवित वर्तमान सत्य के उस व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें बिखरा हुआ झुंड एकत्र किया जाएगा अर्थात 144,000 जिन सभी पर जीवित परमेश्वर की मुहर होगी। बहुमूल्य हीरों में से एक भी अंधकार में नहीं छोड़ा जाएगा। यद्यपि कुछ सुई की नोक से बड़े नहीं हैं फिर भी उन्हें अनदेखा नहीं किया जाएगा और न ही छोड़ दिया जाएगा इस दिन जब परमेश्वर अपने रत्न एकत्र कर रहा है। मलाखी 3:16 थी गयाज में कुछ ही जान पाएगा। वो अपने स्वर्गदूतों को भेज सकता है जैसे उसने लूत को सदोम से बाहर निकाला था। पृथ्वी पर प्रभु एक छोटा कार्य करेगा, वो उसे धार्मिकता में संक्षिप्त करेगा। रोमियो 9:10 देखिए,
धूल मिट्टी और बुरादा रेत और हर तरह का कूड़ा करकट 1844 की पतझड़ से दूसरे आगमन के विश्वासियों के बीच लाई गई विभिन्न और असंख्य त्रुटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूँगा।
1. कुछ चरवाहों ने मध्य रात्रि की पुकार दी जाने के तुरंत बाद जो दृष्टतापूर्वक रुख अपनाया वो ये था कि 7वें महीने के आंदोलन के साथ जो पवित्र आत्मा की गंभीर हृदय गलाने वाली सामर्थ्य उपस्थित थी वो एक सम्मोहनकारी प्रभाव थी। जॉर्ज स्टोर्स इस रुख को अपनाने वालों में सबसे पहले थे।
उसकी लेख 1844 के उत्तरार्ध में मिडनाइट क्राई में देखी, जो तब न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित होता था। 1845 के वसंत में ऑल्बनी सम्मेलन में जे वी हाइम्स ने कहा कि सातवें महीने के आंदोलन ने 7 फुट गहरा सम्मोहन उत्पन्न किया। ये मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो वहां उपस्थित था और जिसने ये टिप्पणी सुनी थी। अन्य लोग जिन्होंने 7वें महीने की पुकार में सक्रिय भाग लिया था ने तब से उस आंदोलन को शैतान का काम घोषित कर दिया है। मसीह और पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कार्य ठहराना हमारे उद्धारकर्ता के दिनों में धर्मनिंदा था और ये अब भी धर्मनिंदा है। 2. निश्चित समय के विषय में अनेक प्रयोग। 1844 में 2300 दिन समाप्त हो जाने के बाद विभिन्न व्यक्तियों ने उनकी समाप्ति के लिए कई समय निर्धारित किए हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने सीमा चिन्ह हटा दिए हैं और समूचे एडवेंट आंदोलन पर अंधकार और संदेह डाल दिया है। 3. स्पिरिचुअलिज्म अपनी सारी विचित्रताओं और अतिरेकों सहित शैतान की ये चाल, जिसने मृत्यु का भयानक कार्य कर दिखाया है, बुरादा और हर प्रकार के कूड़ा करकट द्वारा बड़े ही उपयुक्त रूप से दर्शाई गई है। स्पिरिचुअलिज्म का विष पी जाने वालों में से बहुतों ने हमारे पूर्व एडवेंट अनुभव की सत्यता स्वीकार की और इसी तथ्य के कारण बहुतों को ये मानने पर मजबूर किया गया कि 1843 और 1844 के महान एडवेंट आंदोलनों का संचालन परमेश्वर ने किया। ऐसा मानना स्पिरिचुअलिज्म का स्वाभाविक फल था। पत्रस उनके विषय में जो विनाशकारी विधर्मियां ले आएंगे, यहां तक कि जिसने उन्हें मोल लेकर खरीदा उस प्रभु का भी इनकार करेंगे, कहता है, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। 4. एसएस स्नो का अपने आप को भविष्यद्वक्ता एलियाह बताना। ये व्यक्ति अपने अजीब और उच्छृंखल जीवन क्रम में इस मौत के काम में भी अपनी भूमिका निभा चुका है और उसके आचरण में ये प्रवृत्ति रही है कि वो अनेक ईमानदार आत्माओं के मन में प्रतीक्षारत संतों की सच्ची स्थिति को बदनाम कर दे। त्रुटियों की इस सूची में मैं और भी बहुत कुछ जोड़ सकता हूँ, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 20 और 4:7 के 1000 वर्ष को अतीत में रखना, प्रकाशित वाक्य 7:4, 1454,000, मसीह के पुनरुत्थान के बाद वे जो जी उठे और कब्रों से बाहर आए, कर्म रहित सिद्धांत, शिशुओं के विनाश का सिद्धांत आदि आदि। इन भ्रांतियों का इतनी लगन से प्रचार किया गया और उन्हें प्रतीक्षारत झुंड पर इतना थोप दिया गया कि जब भाई मिलर ने वो स्वप्न देखा तब सच्चे रत्न दृष्टि से बाहर कर दिए गए थे और भविष्यद्वक्ता के वचन लागू होते थे और न्याय पीछे की ओर मोड़ दिया गया है और धर्म दूर खड़ा है इत्यादि इत्यादि। यशाया 59:14 देखिए। उस समय देश में ऐसा कोई एडवेंट पत्र नहीं था जो वर्तमान सत्य के पक्ष का समर्थन करता हो। द डे डॉन छोटे झुंड की सही स्थिति का बचाव करने वाला अंतिम पत्र था, परंतु प्रभु ने भाई मिलर को ये स्वप्न देने से कई महीने पहले ही वो बंद हो गया और अपने अंतिम मरणासन संघर्ष में उसने थके मांदे आहें भरते संतों को उनके अंतिम उद्धार के समय के रूप में 1877 की ओर संकेत किया, जो तब भविष्य में 30 वर्ष दूर था। हाय हाय, इस दुखद स्थिति पर भाई मिलर ने अपने स्वप्न में बैठकर रोया, ये कोई आश्चर्य नहीं। भाई मिलर ने 22 दिसंबर 1839 को प्राण त्याग दिए, जिससे उनके स्वप्न के ये शब्द पूरे हुए। हलचल के बीच मैंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली। ये अद्भुत पूर्ति इतनी स्पष्ट है कि इसे देखने से कोई चूक नहीं सकता। ये पेटिका उस द्वितीय आगमन के सत्य का प्रतिनिधित्व करती है जिसे भाई मिलर ने संसार के सामने प्रकाशित किया, जैसा कि 10 कुवारियों के दृष्टांत द्वारा निर्दिष्ट है। मत्ती 25 अप का लेल। पहला, समय 1843। दूसरा, विलंब का समय। तीसरा, आधी रात की पुकार 7वें महीने 1894 और चौथा, बंद दरवाज़ा। 1843 से द्वितीय आगमन की पत्रिकाएं पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति ये इनकार नहीं करेगा कि भाई मिलर ने द्वितीय आगमन के इतिहास में इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का समर्थन किया है। सत्य की इस सुसंगत प्रणाली या पेटिका को टुकड़ों में फाड़ दिया गया है और कूड़े कचरे में बिखेर दिया गया है उन लोगों द्वारा जिन्होंने अपने ही अनुभव को अस्वीकार कर दिया है और उन्हीं सत्यों का इनकार कर दिया है जिन्हें उन्होंने भाई मिलर के साथ मिलकर इतनी निडरता से संसार के सामने प्रचारित किया था। तब कलीसिया शुद्ध होगी और परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष, अपनी सारी त्रुटियों, दोषों और पापों को स्वीकार कर और उन्हें मसीह के लहू से धुलवा कर तथा मिटवा कर वे धब्बा या झुर्री या ऐसी किसी भी बात से रहित होंगे। तब वे अपनी पूर्व महिमा से 10 गुना चमकेंगे। जेम्स व्हाइट ओस्वेगो, मई 1850।